ओम शांति। सभी को मेरा आदर सहित प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी जो इतने सुंदर दूर दूर बिखर कर बैठे हैं, पूरा भारत का नक्शा हमारे सामने है। हम इसे चाहते हैं कि थोड़ा आप नजदीक आए तो इसको आबू का नक्शा बना लेते हैं। तो जो दूर बैठे हैं, बहुत दिल के करीब हैं आप हमारे, तो मैं आप सब से अनुरोध कर रही हूँ, आ जाएं। जो और पीछे हैं वो बहनें भी आगे आ जाएं। कुछ इसलिए किनारे पे बैठे हैं कि थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर थोड़ा साइड पतली गली से, तो आप भी आगे आ जाएं। ये जो बैठे हैं आप भी आगे आए, सभी आगे आ जाएं। दोनों बहनें भी आगे आ जाओ, सभी आगे बीच में आ जाएं। बेहतर रहेगा कि बीच की रो में ज्यादा आ जाएं, अच्छा लगेगा। हम सब एक परिवार के भांति हैं। आज हम सब मिलकर के नजदीक से एक दूसरे को देख सकते हैं, फिर न जाने कब मुलाकात होगी और फिर ऐसी अच्छी बात होगी। इसलिए बेहतर है और नजदीक आ जाएं, इतना पीछे ना बैठे, क्योंकि आज आप ही सब श्रोता हैं और आप ही सब सुनाने वाले भी हैं। इसलिए आज तो जिसको कहते हैं राउंड टेबल, इस तरह से बहुत सुंदर ये अपना विचारों का आदान प्रदान कार्यक्रम होगा। तो हम आज के इस कार्यक्रम को, जो पिछले 3 दिनों से जिसे आध्यात्मिक महाकुंभ की संज्ञा दी गई, उसमें अनेकों बार डुबकी लगाए हुए, अनेक अनुभवों को प्राप्त किए हुए, आज अनुभव वो शब्द है जिसे कहते हैं गूंगे का गुड़, अर्थात उसकी मिठास क्या है वो तो वही जानता है, फिर भी हम चाहते हैं कि क्यों ना ऐसा कुछ शब्दों में अपने अपने अनुभव हम आपस में साझा करें। हो सकता है किसी के और अच्छे अनुभव को हम और करीब से जान सके। तो चलिए आज उस अंतिम और अति विशिष्ट पायदान पर, जहां आप और हम सभी आ पहुंचे हैं, ये पिछले 3 दिनों का सारांश दिवस भी कह सकते हैं। इसलिए आज के इस अंतिम सत्र, विशेष सत्र के लिए इस परम पवित्र मंच को विभूषित करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, आप सभी महान आत्माओं को, हमारा तो मन करता है जो और भी बैठे हैं सबको भी ऊपर ही बुला लें, पर फिर भी थोड़ी सी स्थान और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम मंच को विभूषित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम श्री श्री भदंत करुणाकर महाथेरा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट मॉन्क सोसाइटी दिल्ली। हम सबको बुलाते जाएंगे और आप तहे दिल से और प्रेम के भाव से, कहने से नहीं, जितना आपका दिल की अच्छी सी आवाज से ताली बजाना चाहिए, आज खुले हृदय से आप उस साथ दे सकते हैं। साथ में महामंडलेश्वर श्री श्री 108 सुरेंद्र शर्मा जी महाराज सहारनपुर आपका साथ आगे दे रहे हैं। कैलाश गिरी जी महाराज महंत कघन खंडी हनुमान मंदिर भरतपुर, आगे शारदा आत्मानंद जी महाराज, संचालक रामकृष्ण सेवा आश्रम मंडला मध्य प्रदेश। आगे हैं संत भाई सुखविंदर सिंह जी, कथावाचक गुरुवाणी लुधियाना। हम सबकी परम श्रद्धे परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, निर्देशिका ज्ञान सरोवर माउंट आबू, हम आपको दिल की गहराइयों से आमंत्रित करते हैं। साथ साथ डॉक्टर स्वामी सेवानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ कोल्हापुर, आपका साथ दे रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री श्री 108 प्रफुल्लन रंजन हल्धर कोलकाता, साथ में गुरु माता 108 अनीता जी महाराज सहारनपुर। आगे हमारी दुर्गेश बहन जो चित्रकूट से आई हैं, साथ साथ आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर, आचार्य श्री जालेश्वर दास जी महाराज मानस रतन अयोध्या धाम, आचार्य श्री परमानंद जी महाराज कटनी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी कोकिला मठ भुवनेश्वर, और हमारी राजेश्वरी बहन पटेल नगर से, हमारे ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी जोनल कोऑर्डिनेटर धार्मिक प्रभाग इंदौर से। आप सभी से मेरा करबद्ध आवेदन है कि आप सभी अपना स्थान इस पवित्र मंच पर ग्रहण करें। बहुत सुंदर एक खिले फूलों के गुलदस्ते की भांति ये मंच आपकी उपस्थिति मात्र से, आभा से सुशोभित है। अब पिछले प्रथम पंक्ति के लिए भी हम आमंत्रित करते हैं संत युवराज जी महाराज, कथावाचक राधेरा वृंदावन। साथ दे रहे हैं त्यागी जी महाराज कटनी, योगी रामेश्वर नाथ जी नर्मदा आश्रम मंडला, पुष्पेंद्र जी महाराज चित्रकूट, हिरेन भाई पांचाल कथावाचक गांधीधाम गुजरात, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज सूर्य नारायण मंदिर आश्रम मंडला, संत चंद्र पारस्कर जी महाराज सहारनपुर। जब तक सभी अपना स्थान लेते हैं, आप सबके बीच में कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व एक छोटा सा वृतांत की शुरुआत करते हैं ताकि सभी यथावत स्थान ले लें। हमारा जिस तरह से ज्ञान सरोवर एक एकेडमी है, वैसे ही आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि नॉर्थ इंडिया के लिए दिल्ली और एनसीआर के लिए ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। वहां पर भी प्रतिदिन बहुत सारे प्रोग्राम एट ए टाइम चलते रहते हैं। एक प्रोग्राम कुछ कंपनी वालों के लिए था और दो दिन का प्रोग्राम होने के बाद वो सज्जन अपने घर गए होंगे, सभी गए, बहुत सारे जितने भी थे सब अपने अपने घर पहुंचे, और करीब दो घंटे के बाद वहां एक बहन के पास जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही थी, उनके पास एक फोन आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हास्यप्रद भी है और बहुत गहरा भी ये मैसेज है। उनके पास एक मैसेज आता है और वो बहन बड़ी कड़क आवाज में बोलती है कि आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बोल रहे हो ओवरसी से। वो बहन बड़े प्यार से बोली, हाँ। आप ब्रह्मा कुमारी बहन हो? बोली, हाँ। फिर तीसरी बार कड़क आवाज आती है कि आप क्या सिखाते हो? उस बहन ने बड़े प्यार से कहा, आप क्या बोले, ये तो बहुत बड़ा विस्तार है। उसने बहुत प्रेम से बोला कि हम मेडिटेशन सिखाते हैं। उसने कहा, वो सब तो छोड़ो, आप ये बताओ आप क्या बनाते हो। तो उस बहन ने बड़े प्यार से पूछा, आखिर बात क्या है, वो आप बात तो बताइए। उन्होंने कहा, मैं और मेरा पति दो ही तो घर में रहते हैं, और आज मेरा पति आपके यहां से होके आया तो दरवाजे से मैंने पूछा, बंद दरवाजे में जब नॉक हुआ कि कौन, तो कहता है मैं आत्मा। मेरा अच्छा भला पति गया था आपके पास और वो आत्मा बन के आ गया है। पूरा का पूरा पति भेजा और ये क्या हो गया। तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि आत्मा माना कोई जाने के बाद की गाथा है, परंतु नहीं, आत्मा तो हमारा असली अस्तित्व है। तो चलिए उस जगत नियंता के पास, जिनकी रहनुमाई में आज हम सभी एक साथ एकत्रित हो पा रहे हैं, इस पवित्र मंच को और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए। चलिए इस देह और देह की दुनिया से दूर अपने इस भान, देह के लोक, पंचभूतों से भी पार उस जगत नियंता के पास उन्हें दिल की गहराइयों से अभिवादन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुक्राना उस जगत नियंता का। एक बहुत सीधी सी बात आती है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, और दारा सुत लक्ष्मी तो आम जन को भी होए, वो सभी को प्राप्त हो जाती है। पर ये क्षण बड़े दुर्लभ जो हम सबको प्राप्त हुए, और आज की इस वेला को हम अपने अंतःकरण में संजोएं, तो आप सभी के अभिवादन में सुबह की भोर जिसे सलाम करे, परिंदों की मीठे सुर जिन्हें अदाब करे, सबकी खुशियों का ध्यान रखने वाले ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, मंच के ऊपर और मंच के सामने आप सभी की खुशियों का भी ख्याल करे, आप सबकी खुशियों का ख्याल करे। इसी सुंदर भाव के साथ भारतीय संस्कृति का आगाज अतिथि देवो भव मंचासीन समस्त विभूतियों का सम्मान करने के लिए मैं हमारी बहनों से अनुरोध कर रही हूँ। सनातन परंपरा के अनुसार तिलक और बैच के साथ सभी को सम्मानित करें। चलिए आगे बढ़ते हुए जिस सनातन संस्कृति की हम सभी बात करते हैं, वो हमारे इष्ट देव देवी और देवताएं जो डबल सिरताज थे, दोहरे ताज के अधिकारी थे, उनकी प्रतिमूर्तियां भी आज तक भी मंदिरों में दोहरा ताज लिए हुए हैं। पर आज हम उन्हीं के वंशज होकर के नो ताज, और नो ताज तो दूर की बात, आज जो समाज में हो रहा वो नो लाज, और बन गए हैं हम मोहताज। तो ऐसे में पुनः हमारे बीच में ईश्वरदास जी महाराज जो फरुखाबाद से हैं, हम आपका अभिवादन करते हैं। मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो ऐसी पुनः संस्कृति की स्थापना का आधार जो अध्यात्म है, जो हम पिछले 3 दिनों से इस सत्र को सुन रहे हैं और इसी विषय पर भिन्न भिन्न रीति से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी कल एक जगह कोई चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा जो प्रश्न उत्तर का सेशन था वो बेइंतहा अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, क्योंकि बाकी में शायद कहीं न कहीं नीति की बात आ रही थी, कहीं दिमाग की बात आ रही थी, पर जहां प्रश्न उत्तर था वहां मन की बात आ रही थी, दिल की बात आ रही थी। तो चलिए आज भी हम अपने इस सेशन के अंदर, आप सब देख सकते हैं कितने महानुभाव हैं, सभी को सुनना है, तो सभी से सर्वप्रथम पहले ही करबद्ध हम निवेदन कर देते हैं कि सभी अपने अपने समय की सीमा में रहते हुए अपने अनुभवों के विचारों को हम सबके बीच में रखेंगे। अब मैं सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी बहन पटेल नगर से अनुरोध करती हूँ, आप अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। राजेश्वरी बहन।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मंच की शोभा को सुशोभित करने वाली हमारी परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, डायरेक्टर ज्ञान सरोवर, तथा जो पिछले 3 दिनों से जो आध्यात्म जगत की बात कर रहे हैं, तो आज मुझे सुनाते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिस आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान सरोवर के आज के इस हार्मनी हॉल के स्टेज पर पूरे आध्यात्म जगत के संत महंत शिरोमणि पधार चुके हैं, तो ये आध्यात्मिकता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। तो एक बार जोरदार इन संतों के लिए हम दिल से सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आज हमारा जो ये सत्र रखा गया है, अनुभव सत्र, तो वैसे तो जो मेहमान आते हैं तो वो कुछ न कुछ अनुभव सुनाते हैं, लेकिन हम आपके बारे में क्या अनुभव सुनाएंगे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप सभी संत महंत भारत के कोने कोने से यहाँ पर पधारे, और सभी ने, हमने देखा कि सभी ने बहुत अच्छी तरह से सारे प्रोग्राम्स को, सारे सेशंस को, इवनिंग मेडिटेशन प्रोग्राम को, या सुबह का अमृत वेले का योग मेडिटेशन आदि बहुत ही एक्यूरेसी से, अलर्ट होकर के और नियमित रूप से आप सभी ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, वो हमें बेहद खुशी हुई। इसके साथ साथ जो भी संत यहाँ पर आए, और सभी संतों को मन में एक ही इच्छा थी कि जो कुछ भी यहाँ सुनाया जा रहा है और जो कुछ भी यहाँ मिल रहा है, हम उसको ले और उसको जाकर के हम अपने अपने स्थान पर उसको बांटे। मेरी कई संतों से आचार्य से और कहीं लोगों से जब बातचीत हुई तो उनके उद्गार दिल के मैंने यही देखा कि ये जो चीज है, जो सत्य ज्ञान है, इस ज्ञान को हम क्यों ना भारत के कोने कोने में जाकर के लोगों को सुनाया जाए, ताकि जो थोड़ी बहुत भ्रांतियां लोगों के मन में हैं, तो उस भ्रांतियों को भी, इस भ्रम को भी दूर कर दें और परमात्मा शिव को, भगवान शिव का प्रत्यक्षता का कार्य करने में हम आपकी सहायता करें, ऐसा मुझे किसी ने अनुभव सुनाया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे संतों की तरफ से, हमारे सम्माननीय मंच की तरफ से बहुत खुशी हुई। सभी बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी हाँ, घर में दो चार मेहमान आते हैं तो कभी कभी दो चार ऊंच नीच बातें हो जाती हैं। तो हमें हमारा परिवार समझ करके, या ये कहेंगे हमारा घर समझ करके, अगर कोई छोटी मोटी बात हुई हो तो आप अपना घर समझ करके उसको समा लेना, और समा करके अच्छाई जो है उसको आप फैला देना। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे सभी संतों का जो चेहरा है वो ज्ञान सरोवर में आने के बाद एकदम प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, और उनका बार बार ये मन कह रहा था कि दीदी बस अभी हमारा जाने का समय आ गया। हमने कहा आ गया, तो आप जा नहीं रहे हो, हम आपको विदाई नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि बादल भरने आते थे और भर के जाकर के बाहर जाके बरसते थे। तो आप सभी परमात्मा के रहनुमा हो, आप रहनुमा यहाँ से बहुत सुंदर अनुभव का खजाना भर करके जा रहे हो सभी? आप एग्री हो सभी? हैं? नहीं जा रहे? दिल से नहीं जा रहे? अच्छा, तो आप सभी रहनुमाओं यहाँ से जा रहे हो, लेकिन आप सभी आने वाले साल में इससे भी डबल अपने साथी सहयोगियों को लेकर के आएंगे। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति बहुत 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 शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत सुंदर, आपने सभी की ओर से अपना अनुभव हम सबके बीच में रखा। अभी ऐसे महान व्यक्तित्व को हम आमंत्रित करते हैं, जिनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूं, करुणाकर भाई जी हमारे महान संत हैं और जगत नियंता भी करुणा निधान है। एक भजन में लाइन आती थी कि करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हम सब भी यही चाहते हैं। तो भाई हमारे बहुत ही माननीय संत के लिए मैं इतना कहती हूं कि हम सुबह लिखते हैं और शाम लिखते हैं, मंजिल लिखते हैं, मुकाम लिखते हैं, पर ये कलम भी खुशगुवार हो जाती है। भदंते करुणाकर महाथेरा जी, जब आपका हम नाम लिखते हैं, तो चलिए उतने ही सह सम्मान के साथ ये पवित्र मंच आपको आमंत्रित करता है, आप आए और अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करें।
न जच्चा वशलो होती, न जच्चा होती भामनो, कम्मनो वशलो होती, कम्मनो होती भामनो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जन्म से न कोई शूद्र होता है, न कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। हम आप सब लोगों के अच्छे कर्म हैं, इसलिए हम सर्वोच्च हैं। यदि हमारा कोई भी कर्म खराब है तो हम वैसे ही अधम कहलाएंगे। आज के सभा में मुख्य रूप से बहन कुमारी राजेश्वरी जी, आज हम सनातन संस्कृति के आधार का आध्यात्मिक ये सत्र लगातार 3 दिन से मना रहे हैं, चला रहे हैं और इस आध्यात्मिक सत्र में ढेर सारे साधु संत महात्माओं त्यागी योगी जोगी सबने अपने अपने विचार रखे, आत्मा परमात्मा के संबंध में बताया, शिव शक्ति बाप दादा के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, जीवन कैसे श्रेष्ठ हो इसके बारे में बताया, पवित्रता के बारे में बताया, जीवन कैसे स्वच्छ और अच्छा लगे उसके बारे में बताया, दुखों का निवारण कैसे हो इसके बारे में बताया और सबसे ज्यादा सनातन संस्कृति को हम कैसे बचाएं कैसे बढ़ाएं। सनातन संस्कृति के महापुरुष जिन्होंने भारतीय समाज के सोई हुई आत्मा को जगाया, आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, कबीर आए, चोखा मेला आए, चैतन्य महाप्रभु आए, श्री कृष्ण आए, तमाम संत महात्मा योगियों ने अपने अपने तरीके से आत्माओं को जगाने का काम किया। आज हमारे पास बहुत पूरे देश में विकराल समस्या है। हम कहते हैं किसी अच्छी बात को इसलिए माना जाएगा क्योंकि बहुत से लोग उसे स्वीकार करेंगे। जितनी ज्यादा स्वीकारोक्ति होगी, यदि स्वीकारोक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को दुनिया में स्वीकार किया, उसके बाद मुस्लिम को स्वीकार किया, उसके बाद बुद्धिज्म को स्वीकार किया, उसके बाद अन्य लोगों को स्वीकार किया। ये क्या मतलब है? जब हमारी सनातन संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी बहुत दृढ़ संकल्प से भरी हुई है, तपस्या से भरी हुई है, योग से भरी हुई है, लेकिन इसका क्या कारण है कि तमाम नॉर्दर्न इंडिया में, चाहे तो अरुणाचल हो, असम हो, मिजोरम मेघालय हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, जितना भी पूरा का पूरा इलाका है जो बांग्लादेश से और बर्मा से संबंध रखता है, वहां तमाम लोग हमारी सनातन संस्कृति को छोड़कर त्याग कर वो दूसरे कल्चर को स्वीकार कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम जो भगवा वस्त्र पहने हैं, हमने जो अपना घर छोड़ा है, हमने जो अपना परिवार छोड़ा है, हमने अपने भाई बंधुओं को छोड़ा है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम लोगों को, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी कुरीतियां दिखाई देती हैं जिसकी वजह से लोग हमसे दूर चले जाते हैं। मैं बिना कहे सुने बीबीसी लंदन के आधार पर, अमेरिका की न्यूज के आधार पर, जापान की न्यूज के आधार पर, सारी दुनिया के न्यूज के आधार पर मैं बताना चाहता हूं, यहां का हर एक व्यक्ति सनातनी है। जो भारत माता के तमाम देवी देवताओं में, भगवानों में, तमाम हमारे संप्रदाय में विश्वास करता है, वो सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, संस्कृति के मानने वाले हैं। लेकिन रामनाथ कोविंद जो देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, मैं उस समय जगन्नाथपुरी में था, मैं ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में गया था, लेकिन कोविड को मंदिर के अंदर सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ने दिया। रामनाथ कोविंद मेरे सेंटर में रह के एमए किया, एलएलबी किया, मेरे गुरुजी जब खत्म हुए वो उसमें गए, योगी जी भी आए, तमाम देश के लोग आए, लेकिन इस बात के प्रश्न को हमें उठाना चाहिए था। वो नेकर पहन के सुबह आरएसएस की शाखा में भी जाते थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे पूज्य हैं, राम को हम मानते हैं, सुबह सुबह राम राम करते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर एक भी बैकवर्ड और
अन्य लोग नहीं थे। उमा भारती जो छाती पीट पीट कर कहती थी कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगी, उमा भारती सरयू नदी के किनारे पर रो रही थी। विनय कटियार वहां रो रहे थे और कल्याण सिंह के बेटे भी वहां रो रहे थे। राष्ट्रपति मुर्मू को और कोविंद को नहीं बुलाया गया। ये जब तक ये भेदभाव रहेगा, यहां देश की हमारी संस्कृति के दो दुश्मन हैं, एक जातवाद एक सांप्रदायिकवाद। जब तक समाज में आप किसी गांव में चले जाना, आप उससे कहना क्या तुम सनातन के धर्म के मानने वाले हो, वो कहेगा हां मानता हूं। लेकिन आज गांव में किसी भी एक गांव में हम समता नहीं ला सकते, भाईचारा स्थापित नहीं कर सकते। वहां की व्यवस्था को हम देखते हैं जब, तो हम रोते हैं कि हमारा भारत किधर जा रहा है। ये देश चाहे सामाजिक क्रांति हो, चाहे आर्थिक क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो या आध्यात्मिक क्रांति हो, इस बात के काम को मैं इसको छाती ठोक के कह सकता हूं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई बड़ी शालीनता के साथ, बड़े त्याग के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, बिना किसी व्यवस्था के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं यहां इसीलिए आता हूं क्योंकि मुझे यहां समता दिखाई देती है, यहां पर भाईचारा दिखाई देता है, यहां पर करुणा दिखाई देती है, यहां पर राष्ट्रीयता दिखाई देती है, यहां पर तमाम चीजें देखने के लिए मिलती हैं। मैं जापान गया, 19 कंट्रियों में घूमा। जापान के एक व्यक्ति से मैंने पूछा, बोले व्हाट इज योर रिलीजन, बोले आई एम बुद्धिस्ट। बोले तुम्हारे देश पर जब कोई आक्रमण करेगा तो तुम क्या करोगे, बोले हम लड़ेंगे मरेंगे और अपने देश की अपनी भूमि की रक्षा के लिए हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। मैंने कहा तुम बुद्धिस्ट हो, यदि कोई बुद्धिस्ट आकर तुम पर हमला करे तो तुम क्या करोगे। उन्होंने कहा मैं बुद्ध का भी सर काट के जमीन पर डाल दूंगा, मुझे भारत अपना देश अपनी भूमि जापान इतना प्यारा लगता है। लेकिन यहां आदमी देश को कम प्यार करता है, अपने धर्म को ज्यादा प्यार करता है, देश को कम प्यार करता है, अपनी संप्रदाय को ज्यादा प्यार करता है, देश को कम प्यार करता है, अपनी जातियों को अपने सरनेम को ज्यादा प्यार करता है। हमको करना चाहिए कि हमारा देश सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे ज्यादा बलिष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। भारत जैसा अद्भुत देश, भारत जैसा महान देश सारी दुनिया में नहीं आया। यहां पर मुस्लिम आए तो मुस्लिमों ने कहा भारत महान है, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा भारत देश महान है। इसलिए हम लोगों को भी मिलकर, हम लोगों को भी पूरी तरह से एक साथ मिलकर इस देश के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और क्रांति जो होती है शिक्षा में होती है, अशिक्षा में कोई क्रांति नहीं होती है। जब यहां पर शिक्षित लोग होंगे देश में सामाजिक क्रांति होगी, धार्मिक क्रांति होगी। इतने सारी दुनिया में बिना पढ़े लिखे नहीं, हमारे देश में ही विद्या बांटने वाली देवी पैदा हुई। लेकिन 50 करोड़ लोग यहां अंगूठा टेक हैं, हमारे देश में ही धन बांटने वाली देवी पैदा हुई। लेकिन यहां पर इतना कर्ज है विदेशों का, और एक छोटे से देश से जिसकी 15 करोड़ की आबादी है वो हमारे देश को लोन देता है। बड़े शर्म की बात है, 140 करोड़ का देश और 12 करोड़ का देश से हम भीख मांग रहे हैं कि हमें दान दे दो। हमको बलिष्ठ होना पड़ेगा सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सांसिक दृष्टि से। और इसके लिए आपको काम करना है तो केवल एक ब्रह्मा कुमारी का ही ऐसा सेंटर है जहां से आप बलिष्ठ हो सकते हैं, एकता आ सकती है, समानता आ सकती है, भाईचारे का बिगुल बच सकता है। मैं जादान बोलते हुए इस 3 दिन के सत्र में, मैं कल रामनाथ भाई को फोन पर मैंने कुछ बताया, क्योंकि माँ बाप से बच्चा लड़कर कोई चीज मांगता है, जब प्यास लगती है तो वो अपनी माँ से रोता है, दूध मांगता है। मैंने मांगा तो उन्होंने तो ऐसा दे दिया कि मेरे से पिया भी नहीं जा रहा, सबसे पहले मेरा ही नाम दे दिया मंच के लिए। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, मैं सभी साधु संत महात्माओं का इस विशेष सत्र में, इस पावन परम भूमि में, ज्ञान सरोवर की इस महान धरती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा बाबा की धरती से इस उस महा ज्ञानी ध्यानी त्यागी की धरती से आप लोग कुछ लेकर जाएं और लेकर सारी दुनिया में बांटें, दुनिया के लोगों को बताएं, कोई आदमी छोटा नहीं है, कोई आदमी बड़ा नहीं है। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, बहन जी चिंता मत करना। मेरा एक मित्र था, जाति से ब्राह्मण था, लेकिन बगल में एक छोटी जाति का रहता था झाड़ू लगाने वाला, उससे वो बहुत दूर रहता था, घर में नहीं आने देता था। बोले नहीं, इसका खून खराब है। जब वो बीमार हुआ, मेरे यहां पर रुका, डॉक्टर ने कहा इसको जल्द ही, इसको खून की जरूरत है। मैंने उससे कहा मैं कौन सा खून लाऊं, हिंदू लाऊं कि मुस्लिम लाऊं, सिख लाऊं कि ईसाई लाऊं, ब्राह्मण का लाऊं कि क्षत्रिय का लाऊं, वैश्य का लाऊं कि शूद्र का लाऊं, नाई का लाऊं कि धोबी का लाऊं, कहार का लुहाऊं कि सुनार का लाऊं। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास गया हूं, मिला नहीं है। हमने कहा वहां ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, वहां पर ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, और तुझे ओ पॉजिटिव की जरूरत है तो ओ पॉजिटिव उसी का है जिससे तू नफरत करता है, तू कहे तो मैं चला जाऊं। उसने कहा जल्दी जाओ, उसके बाप ने मेरा बच्चा बच जाएगा। उस व्यक्ति ने जिससे नफरत करता था, उस व्यक्ति ने उसको खून दिया और वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। आज उसकी उम्र 62 वर्ष है। कहने का मतलब यह है कि भगवान के यहां कोई जातियां नहीं, भगवान के यहां परम पिता के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भी छोटा बड़ा उस परम पिता के यहां होता है तो उसके कर्मों से होता है। यदि वो काम करता है, लोभ करता है, मोह करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, अपने से सबको नीच समझता है तो परम पिता के यहां कोई जगह नहीं है। परम पिता परमात्मा के द्वारा उसी के लिए जगह है जो नफरत नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, भूखे नंगे मजलूम शोषित पीड़ितों को अपने गले से लगाता है। मैं इस महान सत्र में ज्यादान बोलते हुए बोल तो मैं घंटा दो घंटा भी सकता हूं, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया में जाता हूं और एक साल में कम से कम 10 लाख लोगों को संबोधित करता हूं। कोई देश का ऐसा स्टेट नहीं है जहां भंते करुणा कर नहीं जाता है। लेकिन इन ब्रह्म कुमारी बहनों को और ब्रह्म कुमारों को मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने जो बीड़ा उठाया है, आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो प्रतिज्ञा की है और आप परमपिता परमात्मा की संतान बनकर इस देश के कोने कोने में हमारी बहनें एक छोटी सी कोठरी में रहकर, एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर, मैंने देखा है कि गांव में रहकर, खेड़े पारे में रहकर कुछ बहनें काम कर रही हैं। मैं छत्तीसगढ़ भी गया, फरुखाबाद भी गया, बिहार भी गया, छोटे छोटे उसमें लेकर काम कर रही हैं। वो अपनी परेशानी को नहीं देखती, अपने दुख को नहीं देखती, अपनी भूख को नहीं देखती, अपनी प्यास को नहीं देखती, जाड़ा गर्मी बरसात को नहीं देखती, लेकिन वो स्वतः ही 4 बजे उठकर योग करती हैं और मुरली सुनती हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुरली को कभी भी अनुपस्थित ना रहें और योग चाहे आप कमरे में बैठकर करें, चाहे किसी जंगल में करें, चाहे किसी और जगह करें, लेकिन योग अवश्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम के लिए और बहनों के तमाम योगदान के लिए और आप सबके लिए कि आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि के साथ पुनः आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको सुनकर एक बात तो याद आ रही थी कि दिल में अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा है। दिल में अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा है, गर नजर में ख्वाबों की रश्मियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा है। हवाएं जो चल रही हैं, हवा के झोंकों जैसा हिल मिलकर रहना सीखें, गर अपनी आंखों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो जिंदा है। बहुत खूब। आपकी वाणी में बहुत ओज और तेज, आप धर्म की बात कर रहे थे, आप जाति या संप्रदाय की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ तो सबसे पहली बात कही जाती है, धर्म वो जो धारणा की जा सके, धर्म वही जो हम अपने जीवन में और धारण वही करना है जो हमारी अनंत अपनी ही शक्तियां, जो उस जगत नियंता ने हम सबको दे करके भेजी हैं, चाहे वो करुणा ही क्यों ना हो आपके नाम के अनुसार, चाहे प्रेम हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे संतोष हो, चाहे आनंद हो। तो सभी आनंद से एक बार जोरदार तालियां बजा लें। और अभी इसी प्रक्रिया को आप बहुत अच्छे से सब समझ जाते हैं, तो समय की परिधि को फिर से मैं हाथ जोड़कर नम्र विनयदन करते हुए कहना चाह रही हूँ। और अभी हम महामंडलेश्वर श्री श्री 108 सुरेंद्र शर्मा जी महाराज, जो सहारनपुर से पहुंचे हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आए और अपना मन के भाव उद्गार, जो यहाँ पिछले 3 दिनों में आपने जो अनुभव किया, हमारे साथ साझा करें महाराज जी।
श्रद्धेय मंच और मेरे सम्मुख बैठे सनातन धर्म प्रेमी साधकगण, आश्चर्य में हूं कि मैं अपनी बात मंच को सुनाऊं या आपको सुनाऊं, क्योंकि इधर भी संख्या उतनी है, उधर भी संख्या उतनी है। मुझे अपने अनुभव शेयर करने के लिए आदेशित किया गया है, तो मैं आपको साक्षी मानकर और ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने वचन सत्य वचन कहूंगा, अपने अनुभव कहूंगा, समझे, और समय सीमा में अपनी बात को पूरा करूंगा। सत्य वचन जो होते हैं वो बबूल के पत्ते की तरह कड़वे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो मीठे लगने लगते हैं। जुलाई 2018 से पहले मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ नहीं जानता था, ABCD नहीं पता थी। मैं एक दिन अपने साथियों के साथ बैठा था जो हम उम्र थे, तो 2 महिलाएं सफेद वस्त्रों में निकली जा रही थी, उनको किसी को जानते थे, तो उनका अभिवादन हुआ। तो मैंने पूछा बाद में ये कौन है, तो बोले कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था से संबंधित हैं। मैंने कहा यहाँ इनका ऑफिस कहाँ पर है, कि है ऑफिस यहाँ पर, बता देंगे, लेकिन तुम वहां जाना मत। मैंने क्यों, कि बिल्कुल मत जाना, नहीं मेरा ये तुम्हारे मतलब का ऑफिस नहीं है। मैं बताऊं तो सही कि वहां 3 घटनाएं होती हैं, बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, सत्य वचन बोल रहा हूं। उन्होंने पहला कहा कि पहले वहां जाकर के ब्रेन वॉश किया जाता है, दूसरा सम्मोहन क्रिया की जाती है, तीसरा जो इनके चंगुल में फंस गया वो उसकी घर वापसी नहीं होती, ये इनके वचन थे। मैं घबरा गया, लेकिन आपको सच बताऊं कि जुलाई 18 के बाद मैंने इनका 9 दिन का कोर्स भी किया, जानबूझ के क्या कि देखो वहां क्या होता है, कैसे सम्मोहन क्रिया होती है या कैसे ब्रेनवॉश होता है। 9 दिन का कोर्स भी किया और हर वर्ष शिवरात्रि को जाता हूं, ये तो नहीं कहता मैं हर रोज जाता हूं, लेकिन महीने में 1 या 2 बार बृहस्पतिवार को भी जाता हूं। इसी तरह का मेरा ब्रेनवॉश हुआ है, इसी तरह का सम्मोहन क्रिया हुई है, लेकिन वो हुई किस लिए, लॉर्ड शिवा और ब्रह्मा तक पहुंचाने के लिए। मैं चाहता हूं सबके साथ ऐसी घटना घटे। दूसरा अनुभव, मैं पहली बार 18 में आया था, तो शायद 18 या 19 जुलाई की बात थी, जब हम ट्रेन में सफर कर रहे थे तो हमारे साथी थे, मैंने उनसे पूछा कि हम कौन कौन चल रहे हैं। हमारा इरादा ये नहीं था कि हम यहाँ आएंगे ब्रह्मा कुमारी, हम सोचे घूमने जा रहे हैं हम माउंट आबू। तो उन्होंने कहा हम 4 जने हैं, 2 वहां मिलेंगे, 6 जने हो जाएंगे। मैं 6 ही है बस, यहाँ के 7वीं और है। मैं कौन, कि ये सफेद साड़ी में जो है। मैंने कहा कौन है ये, कि ये ब्रह्मा कुमारी, मैं इन्हें क्यों ले आए, मुझे नहीं पता था जब तक, कि नहीं ये हमारी गाइड हैं। मैंने आपने नाश करा दिया पूरा यात्रा का, ये सीरियस होकर बैठी रहेंगे, हमारे मुंह पर ताला लग जाएगा, ना हम हंसने के, ना बोलने के, ना मुस्कराने के। हमारी आवाज चूंकि तेज है तो हो सकता है उनके कानों तक पहुंच गई हो, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अगले दिन जहां हम बैठे थे हमारी सीट पर आ गई, नाश्ता करते हुए बोली कि आपने मुरली सुनी है, पहला प्रश्न का। मैंने कहा खूब सुनी है और पढ़ा भी है। कि क्या पढ़ा है, मैंने हमने ये पढ़ा है कि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते थे तो गोपियां तो छोड़ो, गाय आदि पशु पक्षी भी उनकी मुरली सुनने को आ जाते थे। कि अच्छा वो मुरली सुनिए, मैंने पढ़ा भी है और हमने म्यूजिक में सुना है मुरली, और हमारा पोता जो है वो तो पूरे दिन बांसुरी कितने बार बजाता है। नहीं वो नहीं, एक दूसरी मुरली होती है। मैं कौन सी, उन्होंने एक कागज निकाला, दोनों तरफ से छपा हुआ था, मैं पहला शब्द जाते शिव लिखा था, आगे क्या था मुझे नहीं पता। बहुत समय पहले की बात होगी, 6 साल हो गए। तो उनका ये ऐसा पढ़ा है कभी कागज? नहीं नहीं पढ़ी, मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, ऐसे कागज नहीं पढ़े। तो उन्हें पढ़ो, आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 4-6-8-10 लाइन पढ़ी होंगी, बाकी सरसरी डाली मैं कुछ पढ़ लिया कुछ देख लिया, बात शांत होगी आई की होगी। यहां पर आने के बाद यदि हम सफेद ड्रेस को बाईपास कर दें कुछ समय के लिए, तो मैं आपको सच बताऊं, वो जो हमारी गाइड थी यहाँ पूरे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स को दिखाने में, और ब्रह्मा कुमारी नहीं बाहर के आसपास के सीनों को दिखाने में, मतलब इस तरह उन्होंने कोऑपरेट किया, इस तरह बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह कोऑपरेट किया कि आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, कुछ उनसे पूछ सकते हैं कि परिवार में शायद मेरे जितना ज्यादा मैं जिसको सम्मानित कर सकता हूँ उनमें उनका स्थान आता है, और जब उनसे मिलता हूँ, जब साथियों से मिलता हूँ तो उनका कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है। इतना उन्होंने प्रभाव छोड़ा, वो साथी मौजूद है मेरे यहाँ, जब भी मिलूंगा उनका कहीं ना कहीं जिक्र आ जाएगा। ईश्वर जहां है उन्हें स्वस्थ प्रसन्न रखे। आगे अंतिम दो प्रश्न, समय सीमा का ध्यान है मुझे। यहां से जब आप निकलेंगे भोजन की तरफ जाएंगे तो एक पेड़ पड़ता है, एक तो पेड़ हुआ जो बाउंड्री हुई है, एक उसके आगे है मोड़ पर कोने पर, उस पेड़ के नीचे हम 5-6 लोग खड़े थे अपने साथी, और उन्हीं की परिचित जो हमारी गाइड थी 10-12 ब्रह्मा कुमारी जी खड़ी थी। तो जब हमसे उनसे बोलने की हिम्मत हो गई हमें, तो फिर कहेगा घबराना कहेगा संकोच, तो वो बातें कर रही थी हमने, तो मैंने कहा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या पूछिए? मैंने कहा जब आप इस संस्था से जुड़ती हैं तो क्या आपके गले का कोई माइनर ऑपरेशन किया जाता है? तो वो बोली नहीं ऐसा तो नहीं है। आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? मैं मेरे दिमाग में ख्याल इसलिए आया कि यदि हम यहां से बोलें तो हमारी आवाज सड़क तक जाएगी, इतना वॉल्यूम आई है, और कभी इतना धीमा हो जाएगा कि बड़ा वाला ना सुन सके। ये ऐसी कौन सी कला है, कौन सा इंजेक्शन है के पास जो आप घंटे या 2 घंटे तक एक ही वॉल्यूम में बोलती रहती है, ना थोड़ा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। बहुत हंसी सब। अब बोली कि कोई इंजेक्शन नहीं लगता ये, हम मैं आपके लिए बता दूंगा, आप समझना इसको, कि निरंतर अभ्यास करते रहने से हमें आदत पड़ जाती है। पहला सूत्र मिल गया, तो हम चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो कैसी बात हो, यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी। इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न किया, जब तक वो ये जान चुकी थी कि मैं ज्योतिष संबंधी कार्य भी करता हूं, सभी जान चुकी थी वे, तो मैंने तुरंत दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपको कभी गुस्सा आता है, कभी क्रोध आता है आपको? तो वो बोली कि आपने बड़ा अजीब प्रश्न किया, आप तो ज्योतिष का काम करते हो, और इस उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया, आज तक मैं जो है उसका जवाब देने में मतलब समर्थ नहीं हूं। तो जब मैंने पूछा कि आपको कभी क्रोध आता है, तो बोले आप ही तो बताते हैं कि जो होना है होकर रहेगा, जब जो होना है वो होगा तो फिर क्रोध किस बात का? इसने मेरे जीवन को बदल दिया। आपको सच बताता हूं, पहले जब भी किसी के प्रति क्रोध आया महीनों तक नेगेटिव विचार चलते रहते थे, बदले की भावना चलती रहती थी, पता नहीं कब तक चलती थी। यहां आने के बाद इतना तो फर्क पड़ गया, गृहस्थी हूं समाज में रहता हूं, ये तो नहीं क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग घंटे 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा 24 घंटे नहीं, रात गई सो बात गई, 24 घंटे के बाद उड़न छू। तो ये मेरा अपना अनुभव है, मौका लगा मिलेंगे फिर, किस्मत ने कर मिला दिया, और शायद समय भी ज्यादा नहीं लिया मैंने। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करते हैं। आपने एक शब्द से अपनी बात शुरू की थी, ब्रेन वॉश से, तो हम अपने अपने ब्रेन को और बुद्धि को भी दोनों को वॉश करवाने के लिए ही, तो जैसे गाड़ी को वॉश कराने के लिए लेके जाया जाता है, यहाँ हम रोज सुबह जो 4 बजे अमृत वेला करते हैं वो इसी नाम का करते हैं कि सुबह सुबह गाड़ी को अपने ब्रेन को वॉश कर लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, और अच्छी शुद्ध पवित्र गाड़ी में बैठने का मजा ही। जनाब बोलिएगा, सभी गाड़ी वाले हो, मजा ही कुछ और होता है, और गंदी सी गाड़ी हो तो फिर दिल नहीं करता, ऐसे लगता है क्या आज। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, और हम भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ, हम ब्रेन हमारा परमपिता परमात्मा वॉश करता है, और हम राजी राजी करवाते हैं कि हाँ करो क्यों नहीं करो। तो बहुत बढ़िया। और अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही मान व सम्मान के योग्य कैलाश गिरी जी महाराज महंत कदम खंड की हनुमान मंदिर भरतपुर जो आप हमारे बीच पधारे हैं, बहुत सादर के साथ आपको आमंत्रित करते हैं जोरदार करतल ध्वनि के साथ।
ओम शांति। सभी स्टेज पर आमंत्रित हमारे संत महोदय से निवेदन है कि आज का जिस सा सत्र रखा गया अनुभव सत्र, आप उस अनुभव सत्र के रूप में ही अपने विचार रखें। आपके शब्द अगर नपे तुले होंगे तो दिल को तीर लगेगा, और बाकी बार की बातें तो हम बहुत सुनते आए हैं, लेकिन ऐसी बात आप सुनाए जो गीता के सार के रूप में आपको याद करके ले जाएं, तो जितना आप ड्रिप में आप अपने गीता सार के रूप में बात रखेंगे उतना दिल के अंदर बात समा जाएगी और आपकी बोलना भी सार्थक होगा। इसीलिए जो बाकी हमारे वक्ता है वो सार रूप में ही अपने विचार सभी के सामने रखे, ये आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। ओम शांति।
ओम शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज आ रही है कि ना हमें? सबसे पहले मैं इस आबू पर्वत की पावन भूमि को, जो कि ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि भी है, और इस तपो भूमि को मैं सत सत नमन करता हूं। मैं इस ज्ञान सरोवर में स्थित इस मंच को नमन करता हूं और बार बार अभिनंदन करता हूं। इसके बाद मैं हमारी कविता बहन जी, प्रमिला बहन जी और गीता बहन जी, जिनकी प्रेरणा से हमें यहां आने का अवसर मिला, और बहुत ही दूर दूर से पधारे बड़े बड़े महान संतों के दर्शन का लाभ हुआ, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं नमन करता हूं इस मंच की आयोजन समिति को, जिन्होंने मुझे यहां अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, और मंच पर उपस्थित सभी साधु संत महंत महामंडलेश्वर विद्वान मात्र शक्ति और सभी ब्रह्म कुमारी भाई बहनों और उपस्थित जन समुदाय को मेरा बार बार ओम शांति प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज से तकरीबन 130 साल पहले हमारे भारत के महान संत और समाज सुधारक श्री स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि संसार की सारी नदियां अलग अलग रास्तों से होते हुए सागर में ही विलीन हो जाती हैं, इसी तरह से हमारे भी रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारा परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और जो हमारा ये सनातन धर्म है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि इसमें दया है, इसमें करुणा है, प्रेम है, अहिंसा है, कूट कूट करके भरी हुई है। सनातन धर्म में सभी का सम्मान किया गया है, यहां तक कि नदियों का, वृक्षों का, पशुओं का, पक्षियों का। आप ये देखोगे दशहरा के दिन एक नीलकंठ पक्षी होता है, उसके दर्शनों के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसके दर्शन हुए यहां तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हमारे यहां नदियों का भी पूजन किया गया है, माता का दर्जा उनको दिया गया है, वृक्षों का पूजन किया गया है, और यानी कि बहुत सी बातें हैं, उनका सबका सम्मान किया गया है, गाय का सम्मान किया गया है, गंगा का, गीता का, सभी को माता का दर्जा दिया गया। और हमारे सनातन धर्म ने सभी शरणागतों को शरण दी है, जैसे कि पारसी आदि जितने भी बाहर से जो लोग आए थे उनको भी भारत में ही शरण मिली है, केवल उनके साथ में अन्याय और अत्याचार ही हुआ है सब जगह, लेकिन हमारे देश ने सबको शरण दी है और सबको हृदय से लगाया है। अब रही बात भारत के विश्वगुरु की, तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, विश्वगुरु बनाना है। अरे भारत तो विश्वगुरु पहले से बना हुआ है ही है। आज से 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने इसको विश्वगुरु की उपाधि से तो सम्मानित पहले ही कर दिया। अब तो उस उपाधि को हमको सब मिलजुल करके उसको संजो के रखना है, उसको उसके इस गौरव को बना के रखना है। ये हमारी आप सबसे विनती है। तो विश्वगुरु की बात तो ये पूरी हो गई। अब बात आती है भारत को सोने की चिड़िया बनाने की। तो इस सोने की जो चिड़िया हमको बनाना है, इस पर विचार करना है। भारत हमारा सोने की चिड़िया था पहले और अब भी बन सकता है। और सोने की चिड़िया कोई दामन थे और सोने चांदी थे ना बने। आपसी प्रेम भाव, आपसी सद्भाव, भाईचारा, सबसे प्रेम करना, प्रेम से बोलना, जो कि हमने यहां आकर के महसूस किया है इस ज्ञान सरोवर में। अब तक जो है ऐसे भटक रहे थे, हमको कोई ज्ञान ही ना हो एक तरह से सही पूछो तो, लेकिन आज यहां आके ये ज्ञान हुआ है कि वास्तव में ज्ञान सरोवर भी कोई चीज है। लोग बाग एक दिन हमें बाहर थोड़ा सा बाहर की तरफ जाके, मेरी आदत है ऐसी कि मैं भरतपुर को रहने वाला हूं, तो भरतपुर में क्या है कि ज्यादातर जोर से बोले लोग, तो मैं जोर से बोल गया तो एक बहन जी आई हाथ जोड़ के मुद्दे बोली, भैया थोड़ा धीरे बोलो, स्लो बोलो। तो उसके भाषा के बोलने में कितना प्रेम झलक रहा था उसकी भाषा में ही, कि वाकई प्रेम से जो उसने कहा है कि धीरे बोलो, तो उसी से गदगद हो गए हम। तो ज्ञान की बहुत सारी बातों का हमको यहां आकर के अनुभव हुआ। किसी किसी को तो ज्ञान ठोकर खाने से मिलता है कि एक आदमी जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो था बेरिया को पेड़। अब वह बेरिया के पेड़ में छोटे छोटे बेर लग रहे और नीचे एक खेत था, वहां में लग रहे वे कोला। कोला जानते हो आप लोग, काशी फल जाके सब्जी बने। तो वो बैठा बैठा मन में सोच रहा था कि भगवान बड़ा बेवकूफ है, हमें बुद्धि नहीं है, ये जो कोला है जो ये बेरिया में लगाने चाहिए, अरे बेर थे या बेल में लगाने चाहिए, ऐसा मन में विचार कर रहा था वो। और मेल भी हो जाता बेर और बेल। इतनी देर में किसी पक्षी ने एक बेर को तर दियो और वो आगे सिर पे गिरो आग। बाने देखी ऐसे करके क्या है, तो देखा तो बेर, और उसको तुरंत ज्ञान हो गया कि अगर ये कोला मेरे खोपड़ी पे गिरते आगे तो मेरा क्या होता। भगवान भाई माफ करियो, आपके अंदर तो बहुत बुद्धि है, दिमाग है, आप वास्तव में ही संसार को चला सकते हो, तो बुद्धि से ही चला रहे हो। तो ज्ञान क्या है कि कभी कभी ठोकर खा के होता है और कभी कभी जीवन के अनुभव से होता है। और एक छोटा सा प्रसंग हो रहा है 2 मिनट का, कि मैं भरतपुर से और जयपुर एक बारात में आया। तो वह बारात में जब मैं आया तो मुझको पीछे पीछे की सीट मिली साहब वहां पर, और पीछे की सीट पर मैं बैठ गो। अब बैठा रहा उस पर, तो जब भी बस चली तो चढ़ासी कोई ब्रेक करा तो दचकी लगे, और सफर में परेशानी ना, वहां अच्छी हवा लग रही ना कुछ भी लग रही, बड़ा दिक्कत आ रही थी मेरे को। तो मैंने गाड़ी रुकवाई रस्ते में, और छोटे छोटे 2 बच्चे बैठे हुए थे उस ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे। तो पीछे वाली सीट पे जो ड्राइवर के बच्चे, मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम लोग पीछे चले जाओ जरा, मैं यहां बैठ जाऊंगा। तो वो चले गए, जब मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठ गया तो गाड़ी चल रही। तो यहां से लेकर के मैं जयपुर तक पहुंच गया, खूब तो ठंडी बढ़िया हवा लगी और सामने सब कुछ देखने को मिला, कुछ भी दिख रहा है फलानी, उससे नॉलेज भी बढ़ती है देखने से, कौन सी चीज जगह कितनी दूर है क्या है, और खूब हवा आ रही है और सामने खिड़की है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं बड़े मजे से जो है उस बारात में वहां पहुंच गया। जन्माष्टमी में बैठे लोग वाक बोल रहे, पर महाराज कोई सत्संग वगैरह, कोई प्रवचन सुनाओ, कुछ बताओ, कोई जीवन का अनुभव। मैंने कि आज ही हुआ है। बोले क्या हुआ है? बोले बस में जब तक पीछे बैठो जब तक तो धक्का खा रहे हो मैं, और जब यह ड्राइवर के करीब आकर के मैं बैठ गया तो मेरे सफर में जरा सी भी दिक्कत नहीं आई। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि उस ड्राइवर के समीप बने रहो, उसके करीब बने रहो, और उसके नजदीक हम बने रहेंगे, बाबा के नजदीक हम बने रहेंगे, तो शायद जीवन के सफर में भी कोई दिक्कत नहीं आवेगी, कोई धक्का नहीं खाओगे। ये तो मेरा विचार है। अब रही बात उसकी यहां के अनुभव की, एक अनुभव के विषय में और मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी एक दफे किसी उसमें जा रहे थे फंक्शन में, तो जाते समय क्या है, 2 मिनट को साहब ने, तो जाते समय क्या है कि हमारे स्टेशन पे वो बैठे हुए थे, तो वहां पे किसी व्यक्ति ने उनको टिकट दे दिया, बढ़िया बाबा को कौन सो हो फर्स्ट क्लास को, और वो टिकट दे दिया। और टिकट के बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया है, और आने के बाद में बोला है, बल महाराज मेरे को बेटा बीमार है, फलानी जगह मुझको जाना है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। तो स्वामी जी ने अपना टिकट लेकर के उसको दे दिया, बल तू इससे जाकर चला जा मां जी भाई, और मैं तो देख लूंगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो चले गए, और वो पीछे को जो बैसो डब्बा हो गया जर्नल, वह जर्नल डब्बे में बैठ गए। तो बैठने के बाद में गाड़ी चल गई, और चलने के बाद में टीटी आया, बोले बाबा किराया दे। बोल भैया मैंने तो अपना टिकट ऐसे ऐसे दूसरे को दे दिया, और मेरे पास तो टिकट के लिए भी जो है मतलब अब पैसा भी ना आया टाइम पे, और तू उतारे तो उतार दे भैया, बोल कुछ नहीं ऐसे कैसे बैठे हुए, तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या, और ये है और वो है, और दुनिया भर में सुनाने लग गया। इसके में सामने उनके एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो स्वामी जी को जानता था, विवेकानंद जी को। तो उसकी आंख जो खली देखा, तो टीटी से बोला, अरे बेवकूफ ये किससे तुम बात कर रहे हो, ये जानते हो ये कौन सी हस्ती है। बोले भैया मैं तो नहीं जानू। बोले ये वो हस्ती है कि बड़े बड़े राष्ट्र के झंडे भी झुक जाते हैं इनके नाम से, और अभी ये हमारे देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष को भी अगर ये फोन कर दें तो वो भी तुरंत भगा चलाएगा, ये वो हस्ती है। बोले कौन है बता तो सही भाई। बोले यही तो है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हमारे भारत को विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित किया है, ये वही स्वामी। इतना सुना है टीटी ने, और उनके पैरों में गिर गया वो, और पैरों में गिरने के बाद में वो कह रहा है कि महाराज मेरे को कुछ ज्ञान दो, मैंने तो आपके दर्शन करके बड़ा धन हो गया। तो स्वामी जी बोले बेवकूफ अब भी तेरे को ज्ञान नहीं हुआ। बोले क्या महाराज मैं तो नहीं समझो। बोले ज्ञान यही है कि जब तक तू मेरे को जानता नहीं था, जब तक तो तू मुझको उल्टी सीधी सुना रहे हो बहुत जोरा, और जब तुझको ये ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं तो तू मेरा भक्त बन गया। इसी तरह से अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं, या क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और जिस दिन तुमको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम सब को छोड़ करके, हिंसा को छोड़ करके, और इस जगह जो ये पावन जगह ज्ञान सरोवर नाम की जगह, जहां ना तो कोई हिंसा, ना कोई झगड़ा, ना कोई दंड, बड़े प्रेम से बोलना, सद्भाव से बोलना, और शांति का प्रयोग करना, स्वच्छता का प्रयोग करना, चारों तरफ हरियाली हरियाली, इसको देख करके दिल एकदम से गदगद हो गया। पूछो मत कि इन यादव ने कैसे भुला पाऊंगा मैं मां जाके, और कुछ भी पता नहीं। इसलिए जो है ओम शांति, और कोई त्रुटि गलती उसके लिए क्षमा।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, बहुत सारे अनुभवों से हम सबको रूबरू कराया, और अभी फिर से हर बार की तरह एक बार याद दिला देते हैं, हमारा काम भी याद दिलाना है और आपका काम भी अपनी बात को कहना है। तो आगे हम संत भाई सुखविंदर सिंह जी, कथावाचक गुरुवाणी लुधियाना, जो हमारे बीच में पधारे हैं, असी उम्मीद कर दिया तुसी अपना अनुभव बहुत ही सार गर्भित सबके बीच में रखेंगे।
आद गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, सात गुरु नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। ईश्वरी ब्रह्म कुमारी विश्व विद्यालय अते राज योग केंद्र वालों आयोजित कीता ए समारोह चार रोजा, जिस दे विच अज अपन चौथे दिन दे विच संगत रूप दे विच जुड़ बैठे हाँ। सो सभी संगत दे विच जुड़िया आत्मावां तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी वालों बख्शिश होई फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ओम शांति। चौथे दिन जो मंच दे वालों मैनेजमेंट वालों इस मंच दे उत्ते स्टेज दे उत्ते आके कुछ बोलन दा समा मिलिया है। वैसे तो आज जो दिन है आज अनुभव का विचार करनी है, लेकिन मुझे एक और थोड़ा सा टॉपिक दिया है कि ये जो समाज है आज का समाज इसको कैसे सुशिक्षित किया जा सकता है, कैसे कौन सी योजना से हम सुशिक्षित कर सकते हैं। सो पहले मैं थोड़ा इस पे बात करूंगा, उससे भी पहले हम थोड़ा सनातन पे बात करेंगे। सनातन क्या है? सनातन वो है जो पूर्ण सत्य है, जो प्योर है, जिस सत्य को हम सभी जीव, क्योंकि हम कोई आज के इस संसार में गमन नहीं कर रहे, चार युगों से हम 84 लाख जूनों में भोगते हुए कलयुग में हमें फिर एक मौका मिला है। मनुख देही जो कि दुर्लभ है, जो कि बार बार हमें नहीं मिलती, जिसको प्राप्त करने के लिए युग लग जाते हैं फिरते फिरते। नौवें पातशाह जी जिसके बारे में बतलाते हैं, फिरत फिरत बहुत युग हारे हो मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सो हम सतयुग सतपूर्ण सत्य था, पूर्ण सत्य को हम जानते थे, लेकिन अकाल पुरख निरंकार सदाशिव जिसको जहां कहा जाता है, जो प्रकाश रूप है, जो सबको पैदा करने वाला है, सबको पालनहार है, सबका नाश करने वाला है, कैसे करता है? अपनी शक्तियों से। उसने अपनी शक्ति बनाई है, तीन शक्ति है, एक कमाई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवा। सो सतयुग जो सनातन था उसमें जो हम थे, सतयुग सतयुग था, उसमें जो हमारी अवस्था थी वो परमहंस की अवस्था थी, हम सभी परमहंस थे। लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि तो अभी ही मुक्त हो जाएंगे, उसने हमको थोड़ा ब्रह्म में डाल दिया, तो हम ब्रह्म में पैकर हम संसार से जुड़ गए, हमारा मन जो है संसार से जुड़ गए। हमको बतलाया गया है कि एक तन है एक मन है, तन जो है ये सबको दिखता है, मन किस विरले को दिखता है, मन कदों दिखता है, जब मन परमहंस बन जाता है। जब हमको ज्ञान था सतयुग में सनातन की शुरुआत थी, जब उससे बाद ब्रह्म शुरू हुआ, हमको ब्रह्म में थोड़ी थोड़ी मन को मैल लगती गई, दो युग बीते, त्रेता द्वापर, तीन युग सनातन धर्म ही था और कोई दूसरा धर्म नहीं था। हमारी जो पदवी थी, जब त्रेता युग आया, हम परमहंस से नीचे आकर मनुख की पदवी पे आ गए। तो दो युग हम मनुष्य की पदवी पे रहे। फिर कलयुग आया। कलयुग में आकर जो हमको गुरु नानक ने समझाया है वाणी में कि अब हम प्रेत हैं, प्रेत से भी नीचे बोला है। क्या बोलते हैं? काल मह प्रेत जिन्ना राम ना पछाता, कलयुग परम हंस बिचारी द्वापर त्रेत मानस व्रत है विरल है होमे मारी। ऐसे विरले जीव ने होमे को मारे, होमे की मैल लगती आई, हम कलयुग में आ गए। सनातन कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है। हम पर्दा आ गया है, इस करके हम उसको भूल गए हैं। हुन उसको जानने के लिए, पर्दा पासे करने के लिए, या जो होमे की दीवार है हमारे और उस सच के बिचाले, उसको तोड़ने के लिए, या उसको भीतर जाने के लिए एक दरवाजा है। क्योंकि जो हमारा शरीर है ये 10 द्वारों का है। 10वें द्वार की जो कुंजी है वो सतगुरु के पास है। उस कुंजी को प्राप्त करके हम 10वें द्वार में जा सकते हैं, जहां जाकर हम उसके दर्शन कर सकते हैं। बाबा कबीर जी समझाते हैं, 10वें द्वार कुंजी जब दी जाए तब दयाल का दर्शन की जाए। क्योंकि जो मन को मैल लगी है, उस मन को धोने का, जहां संसार में कुछ भी नहीं है, वो जो हमारी मत है वो नाम से ही धोई जा सकती है। लेकिन नाम 3 गुणों में नहीं है, नाम 10वें द्वार में है। 10वां द्वार हमारी ही देही का पार्ट है, जिसको निज महल बोलते हैं, बेगमपुरा शहर बोलते हैं, गगन बोलते हैं, अगमपुरा बोलते हैं। जब तक हम वहां नहीं जाते, हमको नाम नहीं प्राप्त होता। नाम से बिना हमारी मत जो मैली हुई है दोई नहीं जाती, गुण नहीं मिलते। इसके लिए सतगुरु, सतगुरु कहाँ है? सतगुरु कौन है? सतगुरु अविनाशी पुरख है, जो हमारे सभी के अंतर बसता है, 10वें द्वार में बसता है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मैं रहा समाए। लेकिन वो रास्ते ही भूल गए हम। हालांकि हमको कुंजी दिखती है, क्योंकि हम वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम उनका दर्शन नहीं करते। हम ओंकार ओम ओम शांति सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि ओम ऐसा है। अगर हम ओम को जान लिया, ओम के दर्शन कर लिए, ठीक है, सो जो हमारा अनुभव है, क्योंकि हम संत नहीं है, हम कथावाचक भी नहीं है, हम एक किसान है, खेती करते हैं। लेकिन मन में जो चौथा उस अकाल पुरख, उस सदाशिव निरंकार को मिलने का, उस चौ ने को देखते हुए उस अकाल पुरख सदाशिव ने हमसे, हम पे कृपा की कि हमको अपना बनाए। हमारी जो उम्र है 56 साल की उम्र है, 1968 का हमारा जन्म है, लेकिन जो हमारी असली उम्र है वो अभी 12 साल है। उससे पहले जो हमारी उम्र है वो उम्र नहीं है। उम्र कब से शुरू होती है? हमारी शिव कर में जन्म लेने से, गुर प्रसादी शिव कर जन्म है। इस करके हमारा जो जन्म हुआ है 12 साल है, 12 साल हमारी असली उम्र है। जब हम 1 साल के हुए तो हमको हुक्म हुआ कि आप आगे ज्ञान दे। हम 2014 से जो यहाँ पे अभ्यास करते हैं, हम एक ही बात समझा देते हैं कि हमारा एक चैनल है हम चाकर गोविंद के, जिस पे हम 16 से तकरीबन विचार पा रहे हैं गुरुवाणी की, नाल नाल जो अभ्यास है सच में कैसे ध्यान लगाना है, थोड़ा सा अंतर है। यहां भी आंखें खोल कर लगाते हैं, हम भी आंखें खोल कर लगाते हैं। हम थोड़ा जो हमको वेद शास्त्रों में बताया है, गीता में बताया है कि जहां से श्वास आता है हम वहां ध्यान लगाते हैं, नासिका के अग्रभाग पे। सो इस तरीके से हम सब ये करते हैं। दो समय, सवेरे 5 से 5:30, शाम को 8:30 से 9:30 थोड़ी विचार करते हैं, किस लिए कि इस संसार में शांति हो जाए, जो ओम शांति हम चाहते हैं। सो आओ, इतनी विचार करते हुए समय इजाजत नहीं दे रहा है। सो शब्द बोलते हुए बहुत सारी भूलें हो गई होंगी, आप आत्माएं हमें माफ कर देना, क्योंकि आप वक्षण योग हो, परमेश्वर वक्षण योग है, दयालु है, कृपा निध है। सो अंत में मैं आप जी को फिर फतेह अर्ज करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ओम शांति।
ओम शांति। मैं आपसे सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, आप सभी जो स्टेज पर बैठे हैं, ये सभी ज्ञान के भंडार हो, आप सभी अपने आप में ज्ञान के भंडार हो। यहाँ सिर्फ आपको 2 बात सुनानी है कि आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ क्या अच्छा लगा और यहाँ से आप क्या प्रेरणा लेकर के जाएंगे, ये 2 बातें आपको सुनानी।
बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं संत भाई सुखविंदर सिंह जी का, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। दिल है कि मानता नहीं, अब जब एक बार प्रवाह पे आई जाते हैं तो क्या किया जाए। और बात भी सत्य है, आप सब 6-6 घंटे एक साथ धारा प्रवाह वक्तव्य देने वाले हैं और उनको हम 6 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं, ये आप सबकी और हम सबकी मजबूरी है। तो मजबूरी को थोड़ा मजबूती में बदलते हुए अभी हमारे बीच में बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे एक फरिश्ता रूप जैसी ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर सुदेश दीदी जी, आप वो वामन अवतार हैं। मैं इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रही हूं कि आपका जो भारत की राजधानी दिल्ली, वहां से लालन पालन होते हुए आपने पूरे भारत में इस ब्रह्मा कुमारी के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाया और उसके बाद पूरे विश्व में अपनी सेवाएं देकर आप समझ सकते उस कल्चर को सनातन कल्चर में ढालना, अपनों को अपनों में लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसी संस्कृति को पुनः आदि संस्कृति से जोड़ना और वो सब सेवाएं दे करके पुनः भारत के मुख्यालय माउंट आबू और ज्ञान सरोवर से अब पूरे विश्व का संचालन कर रही हैं। दीदी को कह देखते हुए मुझे आज हमारे इस संस्थान की बड़ी दीदी के नाम से जाने जाने वाली, आप बीच का चित्र देख रहे हैं शिव बाबा का, उनके राइट हैंड में मम्मा और उनके साथ में जो ऊपर चित्र है वो दीदी मनमोहिनी जी का चित्र है, तस्वीर है, और आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें हम बहुत दिल से, उन्होंने इस संस्थान को जिसे कह सकते हैं अपने खून से सींचा हो, हर एक भाई बहन परिवार को अपने जिगर से पाल के कैसे यहाँ तक मर्यादाओं में लाते हुए पहुँचाया है। तो ऐसी श्रद्धे दीदी जी को भी प्रणाम करते हुए मैं दो ही शब्द कह रही हूँ, जीवन जिनका फूलों जैसा, हर दिन गौरवशाली था, सुख के मोती इतने बरसाती कि रहने देती न दामन खाली था। ऐसी श्रद्धे दीदी जी, और उन्हीं का प्रतिरूप है आप आदरणीय सुदेश दीदी जी। हम इन्हें कभी कभी प्रेम से स्वदेश दीदी जी कहते हैं, क्योंकि स्वदेश से प्रेम और वही स्वदेश से प्रेम इनको वापस यहाँ पर लेकर के आया परम श्रद्धे आदरणीय सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। मेरे अति सम्माननीय श्रद्धे परमात्मा के नैनों के नूर, या ये कहूं कि उनके सिरताज प्रभु प्रिय संतान, इस बेहद के नाटक में पाठ बजाने वाले मैं अपने आप को भी सुन सकूं और आपसे भी बात कर सकूं, इसलिए इस मशीन को चेंज किया। ये भी प्रकृति का साधन है कम्युनिकेशन का, और ये भी प्रकृति की चीज है कि शरीर के अंग कुछ समय विश्राम चाहते हैं। तो ये परम धाम में चला गया है, वाणी से परे चला गया है। वाणी में आने के लिए और वाणी से आपकी बात सुनने के लिए ये प्रकृति का भी एक सुंदर सहयोग है। अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि हमारे भारत में, भारत की संस्कृति महान है जिसमें प्रकृति के तत्वों की पूजा होती है, पक्षियों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, क्योंकि प्रकृति के तो पांचों तत्व ही, पांचों तत्वों ने ही तो शरीर दिए, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मैंने पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, परंतु वो शरीर जो देव शरीर था, जो दिव्य शरीर था, जो संपन्न और संपूर्ण शरीर था, वो प्रकृति सतयुग से लेकर चलते 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 जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, जिनको अमर पद वाले कहा जाता है, हम वो ही आत्माएं थे। हम सब देव आत्माएं थे, दिव्य मूरत आत्माएं थे। सनातन संस्कृति हमारे संस्कारों में समाई हुई है एक्चुअली, क्योंकि हम सनातन धर्म यानी पुरातन धर्म आदि साथ, खाली सनातन नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उसके आधार पर ये आज का जो सम्मेलन चार दिन से, जो तीन दिन से चल रहा है, तो पुनः पुनः वही सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन दिव्यता हमारे जीवन में आए, उसका ये सम्मेलन है। और आप सभी जो संत महात्माएं, महामंडलेश्वर कथाकार, ईश्वर के प्रिय संतान स्टेज पर उपस्थित हैं, मंच पर उपस्थित हैं या सामने बैठे हैं, हम सब कोई अलग अलग स्थानों से नहीं आए हैं, हम सब एक ही धाम से आए हैं और हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। एक पिता है, एक पिता सबका एक है, गॉड इज वन। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हमेशा बच्चों का जो धर्म होता है, पहली बात, बच्चों का धर्म अपने माँ बाप वाला धर्म होता है। फिर ये बेशक कब कोई शूद्र पैदा नहीं होता, कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, पर संस्कारों अनुसार उनका जन्म होता है। अच्छा, तो परंतु वो जो धर्म माना जाता है वो माँ बाप वाला माना जाता है। तो अपने आप से हम पूछें कि परमपिता परमात्मा का धर्म, हम सब जो धर्म अलग अलग धर्म के नाम से धर्म अपना बोलते हैं, चाहे हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, या बुद्ध धर्म है, या दूसरे धर्म है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा का धर्म, हमारा धर्म वही होगा जो पिता परमात्मा का धर्म है। ये धर्म नाम जो धर्म के हैं वो तो धर्म पिता के नाम से धर्म है, और सनातन आत्मा का जो धर्म है वो परम पिता के नाम से है। इसलिए हमको अपनी सनातन संस्कृति वापस लानी है। तो हम सब ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि हम एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं, और हम सबका धर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता, सत्यता और आनंद। शांति, प्रेम, पवित्रता, सत्यता और आनंद, वही हमारी सभ्यता है, सभ्य समाज है, सनातन सत्य है। परंतु जैसे जैसे सृष्टि के चक्र में सतयुग से लेकर त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, जैसे चीज मकान पुराना होता जाता है, ऐसे संस्कृति धीरे धीरे बदलती चली गई, अन्य आत्माएं आती गईं, और आते हुए नेचुरल जो उनके संस्कार थे, समय अनुसार जिस किसकी आवश्यकता थी उसको विशेष उस धर्म पिता ने आके सहयोग दिया, परंतु परम पिता परमात्मा से मिलन नहीं कराया। परम पिता परमात्मा से मिलन परमात्मा खुद आकर के कराते हैं। इसलिए ये समय है कि हम सब आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाएं, और परमात्मा कहते हैं मेरे से मिलन मनाने से पहले मैं आपको आपसे आपका मिलन बनाना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने आप से ही बिछड़ गए हैं। हम आत्माएं अपने आप से बिछड़ चुकी हैं, अपने आप से बिछड़ चुकी मतलब जो हमारी असली पवित्रता और सभ्यता थी, जो हमारी दिव्यता और अलौकिकता थी, जो हमारी नम्रता और निर्माणता थी, जो हमारी दिव्यता और श्रेष्ठ कर्म था, वो धीरे धीरे बदलते बदलते विकृत हो गया। जो दिव्य सर्वगुण संपन्न थे, सोलह कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, डबल अहिंसक थे, देवताओं के दिव्य दाता रूप में थे, जैसे मकान पुराना होता जाता है, यहाँ की संस्कृति भारत की धीरे 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 बदलती चली गई, क्योंकि आत्माएं और जो आती चली गई वो अपने संस्कार नीचे, अपने अनुसार नीचे लेकर के आई। तो जैसे असली घी में जब घी है तो घी है, जब और दूसरा प्रकार का घी आ जाता है तो असली घी कहने की, पहले असली घी कहने की जरूरत नहीं होती, कहते घी है भाई। फिर थोड़ा और ज्यादा मिक्स हुआ तो नाम शब्द आ गया असली घी, असली यानी वो एक्चुअली एम्फसिस दिया असली, इसका मतलब बीच में कुछ मिक्सचर हो गया। तो ऐसे चलते चलते जो असलियत थी, असल हमारा जो सभ्यता और संस्कार था, वो प्रकृति भी बदलती चली गई, प्रवृत्ति भी बदलती चली गई, विचार भी बदलते चले गए, व्यवहार भी बदलता चला गया, संस्कार भी बदल चले गए, संसार बदल गया। हम कहते हैं वो जमाना तो चला गया, वो तो संसार ही कोई दूसरा था, वो सोने की चिड़िया, वो स्वर्ग जो था सुखधाम था। तो जैसे शांति और सुख, चिड़िया एक जगह नहीं बैठती है, डाली से दूसरी डाली पर, डाली से तीसरी डाली पर। तो भारत की संपत्ति भी जो ओरिजिनली आदि सनातन धर्म के पास थी, धीरे धीरे दूसरे धर्म आते गए, दूसरी आत्माएं आती गई, और किसी ने लूट के लिया, किसी ने स्वराज राज करके लिया, किसी ने छल कपट करके लिया, धीरे धीरे वो संपत्ति भी सोने की चिड़िया भी अपनी चिड़िया नहीं रही, दिव्यता नहीं रही। अब वो समय फिर आ गया है। परमात्मा कहते हैं बच्चे बहुत भटके हो, अभी घर चलने का समय आ गया है, तो जैसे आए थे वैसे वापस जाना है। ऐसे ऐसे नहीं आए थे जैसे अभी आए हो, भटकते हुए नहीं आए थे। तुम आत्माएं वहां से स्वच्छ आई थी, शुद्ध आई थी, एकदम पवित्र आई थी, पर जैसे जैसे देह का भान बढ़ता गया, अभिमान बढ़ता चला गया, मान शान की इच्छा बढ़ती चली गई, नाम की भूख बढ़ती चली गई, उतना उतना असली नाम जो था सत्य नाम वो गुम होता चला गया। परमात्मा का सत्य काम भी बिल्कुल धीरे 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 मनुष्य मत से मिक्सचर होता चला गया। इसलिए इस संसार में जो निर्विकारी दुनिया थी, सत्यता की दुनिया थी, संपूर्ण अहिंसक थी, वो हिंसक बन गई, विकारी बन गई, भिखारी बन गई, पुजारी बन गई। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे अभी समय आ गया है, फिर से वही जैसे अंधेरी रात होती है, दिन बीता, दिन के भी चार टाइम सवेरा है, ठंडक है, गोल्डन सुनहरा सूर्य है, आकाश भी सुंदर लग रहा है, और थोड़ा सूर्य तो वो ही है, पहले सूर्य चढ़ता है तो सबकी आंखें एकदम आह कितना अच्छा सनशाइन है, सनराइज देखने जा रहे हैं, सनराइज देखने जा रहे हैं। पर बहुत जब दोपहर आ जाती है तो कहते पर्दा बंद कर दो, शटर डाउन कर दो, दरवाजा नीचे कर दो, वो सहन नहीं कर सकते। तो प्रकृति में इसी प्रकार परिवर्तन आता है, तो हमारी सभ्यता को भी जो हमारी असली थी, आत्मा में ताकत नहीं रहती वो सत्यता को स्वीकार करने की। और फिर समय आता है, शाम होता है, सूर्य ढलने फिर आता है, अंधेरा हो गया फिर सूर्य चाहिए, तो ये समय आ गया है अंधकार से फिर से प्रकाश में जाने का। द्वापर और कलयुग अंधेरी रात में हम भटके हैं, अब भटकने का समय नहीं, अटकने का समय नहीं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट का समय नहीं है। अभी तो सब पंछियों को उड़ करके घर वापस जाना है, तो जो पंख टूट गए हैं, पवित्रता प्रेम के पंख कट गए हैं, तो परमपिता परमात्मा आए हैं, एक कोई सोने की चिड़िया नहीं, ये तो गोल्डन बाबा के सभी पक्षी थे, सुंदर लिविंग बर्ड्स थे, फरिश्ते थे, जिनका रिश्ता देह से जुड़ता गया, देह के संबंध में बंधन में आता चला गया, मोह ममता के प्रभाव में फंसता चला गया, वो स्वच्छ जल कीचड़ बन गया। जल तो नहीं पकड़ता है, जल को पकड़ो जल अपने आसाद को छोड़ के चला जाता है, पर मिट्टी मिल गई तो कीचड़ बन जाता है। तो वही जो स्वच्छता और सत्यता थी, उसमें देह का भान, ईगो और अभिमान मिक्स होते होते बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग बिल भी ब्रेन फिर भी चलो प्रकृति की चीज है, परंतु वास्तव में जरूरत है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने की। ब्रेन आत्मा की चीज नहीं है, ब्रेन तो डेड बॉडी में भी पड़ा है, दिल आत्मा की चीज नहीं है, हार्ट आत्मा की चीज नहीं है, वो तो डेड बॉडी में भी है, ऑर्गन्स प्रकृति आत्मा की चीज नहीं है, वो तो है मुर्दे में भी है, परंतु क्या निकल के चला गया, दिल पड़ा है, मन निकल गया, मन की शांति शरीर छोड़ने वाले के बाद भी देते हैं, ब्रेन पड़ा है, बुद्धि नहीं है। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार वाली है, तो अपने आप से बिछड़ गए हैं, यानी अपने मन को शुद्ध रखने की बजाय, बुद्धि को परमात्मा शिव से जोड़ने की बजाय, बुद्धि का योग भटक गया, व्यभिचारी बन गई, भटकते भटकते विकारी बन गई, अहंकारी बन गई, और संस्कार भ्रष्टाचारी बन गए, तो व्यवहार बदल गया, संस्कृति बदल गई। अब परमात्मा फिर कहते हैं मेरे से मिलन का सुख तब मिल सकता है जब तुम अपने आप को पहचान लो। तुम आत्मा मेरी संतान हो तो तेरा स्वधर्म कैसा होगा? तेरा धर्म मेरा धर्म ही होगा ना। जो मेरे पिता परमात्मा का धर्म है, कोई किसी देहधारी धर्म पिता वाला धर्म नहीं है। बाकी जितने भी धर्म है धर्म पिता के नाम पर है, पर परम पिता परमात्मा कहते हैं सत धर्म, मैं अधर्म का विनाश करके सत धर्म की स्थापना करता हूँ, और वो सत्यता है आत्मा की शक्ति। तो तुम आत्मा, अपने को आत्मा समझकर मुझ पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ो, तो तेरा जो शक्ति है तेरी आत्मा की, वो तेरे साथ पहले मिलेगी। और जब तेरी शक्ति तुझे आत्मा के पास वापस आई, उतना मेरे साथ संबंध जुड़ता चला जाएगा। तो जो पेरेंट्स के संस्कार हैं, जैसे माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं, अपने आप तेरे पास वो संस्कार आ जाएंगे। जो परमात्मा की शिक्षा है, शिक्षक है, सतगुरु है, तो तेरे पास वो सतगुरु संबंध आता चला जाएगा, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अभी ये तो सोचने की बात है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ करना है, तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि आज मैंने कोई भूल नहीं की, आज मैंने किसको कोई दुख नहीं दिया, आज मैंने कोई झूठ पाप छल कपट नहीं किया, परंतु अपना खाता देखना है, अपना अकाउंट देखना है कि आज मैंने सत्कर्म कितना किया, आज मैंने सुख कितना दिया, आज मैंने दुख कितनी आत्माओं का हारा, आज मैंने कितनी आत्माओं को सच्ची राह बता के परमात्मा के साथ संबंध जुड़ाया, आज मैंने अपने अभिमान को खत्म करके स्वमान में मैं कितनी नेष्ट की। तो जब हम अपने पर ध्यान देंगे तो बाकी सब तरफ से ध्यान हट जाएगा। हम एक तो को जो कांटे चुभाते आए, अब कांटे से फूल बनना है, और वो गोल्डन संस्कारों को फिर से वापस लाने के लिए, सुनहरा सवेरा फिर से लाने के लिए, जो परमपिता परमात्मा की शिक्षा है उसका स्वरूप बदलना है। और परमात्मा की शिक्षा का स्वरूप बनना माना फिर से सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। अंत में मैं आप सबको, हम जो भी गेस्ट आए हैं, जो बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए हैं, बस एक 5 पंखड़ियों का फूल देना चाहती हूँ, जो साथ में लेकर जाओ। जैसे गंगा जल लेकर जाते हैं, गंगा को साथ में ना ले जाते, जल तो ले जाते हैं, तो आप ज्ञान सरोवर से जो आपको ज्ञान की अच्छी बातें मिली हैं, ध्यान की बातें में आपको अंदर दिल में जची हैं, जीवन में कुछ रियलाइजेशन से आपको आया, अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरी सत्यता है, तो जो आपको मिला है वो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को स्वाभाविक ही देंगे। क्योंकि अगर फूल खिला हुआ होता है तो वो कहता नहीं है मैं सुगंध लेके आया हूँ, पर फूल की सुगंध दूसरों को मिलती है, तो हमारे को पक्का विश्वास है कि आप खुद ही फूल बन करके जा रहे हैं, तो आपके जीवन की सुगंध को आप पे मिलेगी, आपको कहने की जरूरत भी नहीं रहेगी, आपका चेहरा देख करके, आपके नेत्र देख करके, आपके वाइब्रेशन देख करके वो कहेंगे कुछ लेकर के आए हैं। तो अब वो आपके कॉन्शियस में आप एक पीस फ्लावर, चलो शांति शब्द हम बोलते हैं ना, पीस फ्लावर, तो मैं पीस फ्लावर की 5 पंखड़ियां देती हूँ, वो 5 पंखड़ियां साथ में लेके जाओ, वो 5 पंखड़ियों का फ्लावर अपनी कॉन्शियस में लेके जाओ, तो सत्यता सिद्ध सत्य सब चीज आप आपके साथ रहेगी। और वो 5 पंखड़ियां, इंग्लिश शब्द पीस है, PEACE, पी का मतलब है प्योर, पक्का धक्का कि मेरा सनातन संस्कार प्योर है, पवित्र है।
दीदी नारायण भाई कह रहे 12 बजे जाना है।
हाँ जब तो इसीलिए मेरा संस्कार जो पवित्र शुद्ध है, मुझे उस पवित्र संस्कार को, पॉजिटिव संस्कार को फिर से वापस पक्का लाना है। और उसी संस्कार से अपने अंदर ई से अभ्यास करना है, जो आपको अभ्यास का अभ्यास तो है, पर उस अभ्यास को पक्का करना है, एक्सरसाइज करना है, एक्सपीरियंस करना है। और ए है एक्शन में लाना है, खाली बैठ के नहीं, ए फॉर एक्शन। एक्शन में लाया, इंटरेक्शन में लाया, तो ऑटोमेटिकली एक्ट बदल जाएगा। एक्शन बदला तो जीवन का डायरेक्शन बदल जाएगा। और सी फ्लावर है कूल और काम माइंड, क्लियर करेज आ जाएगा लाइफ में, सत्य को स्वरूप में लाने का। सिद्ध करने की बात नहीं, जिद करने की बात नहीं, आप स्वरूप बन जाएंगे, क्लियर। और ई है एवरीथिंग, उसमें सब कुछ समाया है। इजी है सब कुछ, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ अपने जीवन में अपनी सत्यता को, पवित्रता को, दिव्यता को, जो आपका ओरिजिनल संस्कार है, बीज आप में है, यहाँ तो थोड़ा जल मिला है ताकि आपका बीज पेड़ बन जावे और वो पेड़ जाके सबको फल देवे, यही हमारी शुभ भावना है। बीज तो सब आत्माओं में पड़ा हुआ है, सिर्फ जल मिला है, उसी जल को देते रहो, फल जाके दूसरों को देना, ये हमारी शुभ भावना है। दो नहीं, वो आप पे ही आपसे तोड़ के ले जाएंगे। ओके जी, ओम शांति।
बहुत 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 दिल से हम दीदी जी का शुक्रगुजार करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ दीदी का अभिवादन, अभिनंदन। इतना कहते हैं कि आप आए इतने व्यस्ततम अपनी व्यवस्थाओं में से, आप आए तो आपकी उपस्थिति ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। आपने बहुत सुंदर बात कही, एक पीस शब्द को इतना अच्छा बांट करके एक एक वैल्यू बना दी उसमें से। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी आदरणीय दीदी जी की उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत वरदान के रूप में है। आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी डॉक्टर स्वामी सेवानंद जी, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ कोल्हापुर, आप हमारे बीच में हैं। हम बहुत ही दिल की गहराइयों से आपका अभिवादन करते हुए ये पवित्र मंच आपको आमंत्रित करता है।
नमस्त्री यतिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ध्याननिष्ठम तपोनिष्ठम सत्यनिष्ठम निरंतरम वैराग्य भास्कर वंदे रामकृष्णम जगद्गुरुम जननीम शारदाम देवीम रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। आज के इस विषय, अभी टाइम अप होने वाला है, ओनली 2 मिनट्स, 10 to 12, तो ये ध्यान रखते हुए मैं बहुत कांटेक्ट करके बोलूंगा, सो विकसित ज्यादा नहीं लूंगा। आप सब स्टेज पे जो धर्मात्मा है, बहन जी, दीदी जी है, आप लोग भाई बहन है, सबको मैं वंदन करता हूं। और मेरा जो अनुभव है, यही आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो अगर आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, समाधान चाहिए, आनंद चाहिए, तो आप अमृत वेला मत चुखाइए, आप जरूर अटेंड करें। इधर का आपने देखा नहीं होगा, आपके जहां भी सेंटर्स है वहां अमृत वाला होता ही है 100%। सो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सो अमृत वाला में क्या होता है, भगवान वरदान देते हैं, जो आपको चाहिए वही वरदान मिलता है। ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, नम्रता चाहिए, जो भी चाहिए आप बैठ जाइए, भगवान देने के लिए तैयार है। एंड ही इज कमिंग, आते हैं और आपको प्रदान करते हैं। तो अमृत वेला का जो इम्पोर्टेंस है वो आप सब लोग जानिए। एंड नेक्स्ट है जो सब ब्रह्मा कुमार भाई बहन का बहुत इंपॉर्टेंट, और ये ऑक्सीजन है, दैट इज ए मुरली, हर रोज का मुरली है। कितने लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, वो जरूर सुनना भी है और पढ़ना भी है, उसमें अपने जीवन के लिए डायरेक्शंस मिलते हैं और वो डायरेक्शन खुद भगवान देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने लिख दिया और वो अपने पास आ गया, तो ऐसा नहीं है। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए स्वामी जी बोलते कि एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। सो यहां अपने को देखने को मिलता है क्या कि एक्सपांशन, एक्सपांड योर हार्ट, एक्सपांड योर माइंड, एक्सपांड योर थॉट्स। सो ये एक्सपांड करने से जो एक आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, समाधान मिलता है, वो कुछ और ही है। और इन ये भाई बहनों से हम वो लेते हैं और उसका अनुभव करते हैं। सो एक्सपांशन इन लाइफ। एंड अभी भगवान श्री रामकृष्ण 1886 में चले गए और उन्होंने पीछे अपनी धर्मपत्नी शारदा देवी को रख के चले गए और उन्होंने उनका षोडश उपचार पूजा किया और सब अपनी तपस्या उन पर नौछावर कर दी। और उन्होंने बोला कि आज से ये सब मातृत्व का, सब नारियों का मैं उत्कल ये करता हूं, उनको पूरा शक्ति जागृत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सो तब से वो माताजी है शारदा देवी, उनका लाइफ बहुत वंडरफुल है। और उसका जो फिल्म अभी देखने को मिलता है वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मिलता है। कितना सेवा करता है प्रेम से, ऐसी सेवा कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। सो अब हम लोगों का कर्तव्य है कि इसमें से जो कुछ मोती है, चुनना है, अपने जीवन में उतरना है। इसलिए स्वामी जी बी एंड मेक, सोता बनो, खुद बनो बोलते हैं और इतरों को बनाओ। अगर हम खुद ये कुछ नहीं लिया तो हाउ विल प्रिपेयर अदर्स। इसलिए ये इधर आने से ये अभ्यास है, सबके लिए अभ्यास है, स्टडी है, एंड आत्म परीक्षण करके देखना है हमें कि हमें क्या पाया है, क्या खोया है और क्या हमें लेना है। सो सर, अभी सनातन धर्म के लिए हम बोलते बहुत है, करते बहुत कुछ कम है, कुछ तो करना चाहिए भी। इसलिए सब महंत को, सब महात्माओं को, सब भाई बहनों को मेरा एक विनती है, प्रार्थना है कि हम कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी यह सनातन धर्म टिकेगा। इसके लिए खुद के लिए बहुत कुछ हमें कष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ आगे सब समाज निकला है और हमारा धर्म जो बच्चों में नहीं है, यूथ्स में नहीं है, आज कितने बच्चे जानते हैं, कुछ भी नहीं है। जो यूथ्स है क्या जानते हैं, ओनली ऑल दे आर बिजी विद मोबाइल्स। इसलिए हमको, मैं अंदर से प्रेम से प्रार्थना करता हूं कि ये सब बंद होने के लिए हमें खुद उनके पास जाना है और ये ज्ञान उनको बोलना है और उनके समक्ष हम खुद वैसे बनना है जैसे हम बोलने वाले हैं। सो मैं बहुत आनंदित हूं यहां आके, मुझे बहुत शांति मिली है, आपको भी मिलेगी, मिली होगी। लेट अस होप पॉजिटिवली, बी ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने से बहुत आनंद मिलता है। मेरा 5 मिनट वक्त हो गया है। सो मैं इस सेंटर से, इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो है, इनका मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद उनको देता हूँ। इतने लोगों का सेवा करना उनका सब एक इतना आसान बात नहीं है, जब खुद करोगे तभी समझ में आता है कि कितना कष्ट लेना पड़ता है। तो रामनाथ भाई है, नारायण भाई है, तो बहने हैं, सबके लिए मैं प्रणाम करता हूँ और मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय राम कृष्ण।
बहुत 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 दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर स्वामी सेवानंद जी महाराज, दोनों ही रीति से, समय की रीति से भी, और आपके वचनों का तो कहना ही क्या, बहुत सार गर्भित तरीके से आपने अपनी बात कही। आपने कथनी और करनी की बात कही तो मुझे दो शब्द याद आ रहे थे कि मानुष की एक खूबी है कि वो सोचता टन भर है। एक टन में कितना केजी होता है? 1000 किलो। इंसान सोचता टन भर है, बोलने की बारी आती है तो मन भर है,
और करने की बारी आती है तो कण भर है। हम सब सोचते हैं यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, अब जाते ही करेंगे, जरूर करेंगे, पक्का होगा, पर धीरे 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 पता नहीं क्या होता है जब करने की बारी आती है। इसीलिए आपने बच्चों की पीड़ा को समझा कि उनकी वेदना को समझो कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उन तक दे नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। और आदरणीय दीदी जी को शायद आगे कहीं जाना है तो आप हमारे बीच से विदा लेंगे। हम एक बार सभी खड़े होकर के दीदी का शुक्राना करते हैं और थैंक्स कहते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। मेनी मेनी थैंक्स। आप सभी एक बार करतल ध्वनि कर दीजिए अच्छे वाली दिल की। चलिए आप भी अपना सभी स्थान लीजिएगा। और अभी हम महामंडलेश्वर श्री श्री 108 प्रफुल्ल रंजन हलधर महाराज जो कोलकाता से पधारे हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना अनुभव सारगर्भित हम सबके साथ साझा करेंगे।
मंच पर उपविष्टो महान विभूति चौक मेरा सम्मुख में बैठे हुए समस्त सदस्यों और इस संस्था का परिचालक वृंदो, समस्त को मेरा शत शत प्रणाम। संस्था मुझसे जानना चाहता था मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का। ये सोच के मैं बाहर के कुछ बोलने के लिए यह खड़ा नहीं हूं, जो मांग है उसी के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं। मैं 25 तारीख के दिन इस जगह में पहुंचा था और उस दिन मेरे को चलने लायक परिस्थिति नहीं था। मेरे साथ में जो लोग है ऑलमोस्ट ऑल सबको मालूम है मैं चल नहीं पाता था, लेकिन 26 तारीख दिन ये ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने के बाद मैं संपूर्ण सुस्त हूं, ये आप लोग देख ही रहा है। खाली उतना नहीं, 27 को और एक डुबकी लगाने के बाद मैं घर से जब आया मेरा मिसेस बिस्तर से उठने लायक नहीं था, शी वॉज टोटली बेड रिडन, एंड कल रात में मुझे खबर मिला कि वो संपूर्ण सुस्त है। ये अनुभव मैं मेरा दिल से ये बात क्यों बोल रहा हूं, यहां आने के बाद मुझे ऐसा कुछ चीजें मालूम हुआ जो कि लास्ट 83 इयर्स में मैं ढूंढ के निकाल नहीं सका। हो सकते उपनिषद गीता और जो भी धर्मग्रंथ है उसके थ्रू जाता तो हो सकते और भी 81 इयर्स है, उतना दिन तो मेरा लाइफ नहीं हो सकते लग जाता। ये 3 दिन में कम से कम 60 साल का जो भी मुझे मिला नहीं था वो मुझे मिल चुका है, और वो लेके मैं झुली भर के लेके जा रहा हूं। खाली मेरा परिवार नहीं, मेरा प्रदेश, मेरा भारतवर्ष, सारा दुनिया में मैं दुनिया का कम से कम 10-20 कंट्री घूम चुका हूं। ये सब जगह में मैं इसका प्रसार जरूर करूंगे कि कहां जाने से हमको असली फायदा हो सकते। आपको मालूम होगा मैं एक ऐसा हिंसात्मक डिपार्टमेंट में नौकरी करता था जहां की हम लोगों को उद्देश्य था कैसा दुश्मन को मारेंगे, जो फाइटर प्लेन मिग इंजन का मैं इंजीनियर था। लेकिन यह आने के बाद मेरा ये आइडिया संपूर्ण परिवर्तन हो चुका है और मैं जानता हूं कि कैसा सद्भाव से सदाचार से आगे हम लोग बढ़ सकते। हिंसा को अभी छोड़ दिया, आप लोगों से मैं प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि ये हिंसात्मक जीवन मैं और कभी अपनाएंगे नहीं। इतना ही बोल के मैं मेरा भाषण समाप्त तो करना चाहता हूं, क्योंकि 2 मिनट का समय दिया, एग्जैक्टली मैं 2 मिनट में आपसे विदाई ले रहा हूं। धन्यवाद।
बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। सभी को अच्छा लग रहा है इस तरह से अगर अपने अनुभवों के सागर को गागर में समा के एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व, वो कह रहे हैं कि हम तो मजबूर थे जो आ नहीं सकते थे खुद, आप भी क्या खूब थे कि अब तक बुला नहीं सकते थे? हमारी गुरु माता रेखा बांकड़ जी दिल्ली से, हम आपको बहुत दिल से बुला रहे हैं और आपका सादर आमंत्रण। अपने अनुभव को बहुत ही संक्षिप्त भाव में।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तसे 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 नमो नमः। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शांति मिली है हमें यहाँ आकर के। बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं एक बार पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ, 12 वर्ष पहले अपने उपकार फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स को लेकर मैं यहाँ आई थी और उन सबका भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि यहाँ आकर के यूं लगता है कि वास्तव में हम कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि धरती पर जहाँ स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है और यहीं पर है। एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैंने ये थोड़ा सा ये चाह रही थी और हो भी रहा है आप सबकी तरफ से। पूरे संसार में जितने आपके सेंटर्स हैं उसमें जो हमारे नन्हे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, अगर वहां पर ये हमारे विचार और ये शांति का जो संदेश है, इस संदेश को अगर हम शुरू से बेसिक से उठाएं तो हम सब का कल्याण हो जाएगा, सारे विश्व में शांति का संदेश पहुंचेगा। और ये सब संदेश पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी है ऐसा वातावरण, ऐसे लोग, ऐसी हमारी बहनें जिनके चेहरे पर तेज है, जो स्वभाव में इतनी नम्र हैं और जो शांति प्रिय हैं। उन्होंने हमें इतना प्रेम दिया है, इतना सत्कार किया है, इतना आदर दिया है और हमें साथ ही साथ में अपनी पहचान दी है। यहाँ पर जो हमने यहाँ 3-4 दिन निकाले हैं उसमें हम सब अपने आप को पहचान गए हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ ये एक बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि हम लोग अभी तक ज्यादातर जो हम सभी ये समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। ठीक है, वो हैं हम, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ? आत्मा। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है और ये हमारे नन्हे मुन्नों को, हमारे जो स्कूल के विद्यालय हैं वहां तक सभी को पहुंचाया जाए, ताकि ये बच्चे जो भविष्य है हमारा देश का, ये पूरे विश्व में शांति फैला सकें। और ये शांति जो हमारा कर्तव्य है कि हमने किसी न किसी तरीके से ये करना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग मैं जानती हूँ पूरे विश्व में ब्रह्म कुमारीज एक इस तरह की संस्था है, ईश्वरीय संस्था है, जो कि इस संदेश को और जो शांति है इस संदेश को पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं और हमारे भारत को एक सर्वप्रिय भारत नंबर 1 बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माता जी का। और अभी मैं ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश बहन जी जो चित्रकूट से आए हैं, चित्रकूट का नाम लेते ही भगवान राम की याद आती है और आप उस धराधाम से पहुंचे हैं, अपनी शुभकामनाएं हम सबके बीच में रखने के लिए। हमारी दुर्गेश बहन।
ओम शांति। सर्व सम्माननीय मंच और बीके भाई बहने, हम सभी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आई आज जिस दिन का हम तुम रास्ता देख रहे थे कि एक शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे सर्व धाराओं की गंगा एक साथ प्रवाहित हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि सभी के स्वर व्यंजनों के साथ एक ही गुंजन हो रहा है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। जितना जो कुछ जिसने समझा और सुना और देखा वो तो जो अपनी जगह पर है,
परंतु सबसे बड़ा मेरा शुभ संकल्प है कि इसे अपने में आत्मसात करके, अपने जीवन में अपना करके अनंत आत्माओं तक पहुंचाने का कार्य बहुत तीव्रता के साथ करना है, गति के साथ करना है। हमारी बहन ने अभी बहुत सुंदर आपको संदेश दिया कि टन भर सोचना, मन भर बोलना और कण भर करना, अर्थात वास्तविकता ये है कि हमें कथनी और करनी एक समान बनानी है। तो हमारा भी यही संकल्प है कि हमारे सभी संत महामंडलेश्वर कथावाचक सभी अपने मंच से अपने ही साथियों को, कम से कम अपने ही श्रोताओं को, अपने ही भक्तों को, अपने ही साथियों को इतना तो संदेश दे देवे कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, जो आपने समझा उन तक पहुंचा देवे। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, सुनाना सब अच्छे से आता है, और वह है जो परमात्मा हमें बार बार अंडरलाइन कराते हैं, दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प किया जाए तो ये जहान बदल सकता है, बाधाओं की तो क्या विसात है, रुख तूफान बदल सकता है, रुख तूफान बदल सकता है। ऐसी भावना है मेरी कि एक सेकंड भी अगर आप दिन में प्रति घंटे में एक सेकंड केवल संकल्प करें, ऐसी मेरी शुभ भावना है कि एक सेकंड केवल निकालें कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और औरों को परमात्मा का बच्चा हमें बनाना है। क्योंकि बनता तो व्यक्ति अपने आप है, लेकिन सिर्फ उंगली के इशारे का, जिसको बड़े पूर्वज कहते आए हैं, भक्त लोग कहते आए हैं, गुरुजन कहते आए हैं, श्रोताएं कहते आए हैं, भक्त लोग भी उसका स्मरण करके गाते हैं कि उंगली दिखाए का पुण्य और उंगली दिखाए का पाप। तो केवल हमको इतना ही करना है कि उन्हें केवल इस ओर इंडिकेशन देना है, इशारा देना है। जैसा कि हमारी बहन ने अभी अग्रवक्ता ने कहा कि ये ज्ञान सरोवर की महिमा लोगों तक पहुंचानी है, तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि जैसे दुनिया में रिवाज है, यहाँ तक कि इस्लामी धर्म में भी रिवाज है कि जब वो कावा पर जाते हैं तीर्थ करने तो वहां से जमजम का जल ले आते हैं, तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि गंगा में जाते हैं तो गंगा जल जरूर ले आते हैं, चाहे हर की पौड़ी पर जाएं, चाहे काशी बनारस में जाएं, चाहे चित्रकूट धाम में जाएं, तो भरतकूप का जल ले आते हैं। तो क्या आप ज्ञान सरोवर में आए हैं तो इस ज्ञान मान सरोवर से ज्ञान जल नहीं ले जाएंगे और एक एक अंजलि भी दूसरों को नहीं पिलाएंगे? तो मेरी यही शुभकामना है कि मेरे सभी भाई, सभी आत्मिक बंधु यहां से वो जल, वो गंगा जली, सब गंगा जली ले जाते हैं ना, यहाँ तक कि मरने के बाद भी गंगा नहाने जाते हैं तो घर में गंगा जली ले आते हैं। तो गीता का ज्ञान कहता है मर जीवा भव, तो यहाँ आए ही हैं मर जीवा बनने के लिए। तो जब हम मर जीवा हो गए, देह द्वय भान, देह की संबंध, देह के रिश्ते, देह के धर्मों से हम मुक्त हो गए, बंधन मुक्त हो गए, तभी हम आनंद के पात्र बनेंगे, नहीं तो आनंद का पात्र बन नहीं सकते हैं। तो हमारा ये अनुभव कहता है, हमारी अनुभूतियां कहती हैं, हमारे जीवन की वास्तविक अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप सभी इस आनंद सरोवर से, इस ज्ञान सरोवर से, इस मान सरोवर से वो अंचली लेके जाएं, जिस अंचली से अनंत आत्माओं की, अतृप्त आत्माओं को संतप्त कर दें, उन्हें संतुष्ट कर दें, उन्हें वास्तव में संभवतः हम समझते हैं इसमें आप अवश्य ही सफल होंगे। और उसका केवल यही तरीका है कि एक के साथ एक लिखना शुरू कर दें, तो निश्चित अगले बार 111 संतों को एक एक व्यक्ति ला सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश बहन जी, आपका मन का भाव इतना विशाल कि आपने एक के साथ 11 नहीं 111 पर जोड़ा, और जो इतने संत इतनी देर से बैठे हैं, मुझे तो लग रहा है वो प्रेम पाश में सब बंधे हुए हैं, जैसे हनुमान जी को लव और कुश ने अपने पाश में बांधा हुआ था। नहीं तो इतने बड़े बड़े संतों को और आप सबको इस तरह से बिठाए रखना बहुत बड़ी बात, ये आप सबकी कृपा दृष्टि है। और बस अब थोड़ी देर और बनी रहे, इसके लिए अब हम आगे बुलाते हैं आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर। आप हमारे बीच में हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और आप अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे।
इंसान मरता है, वापिस आके कभी उसने बताया कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? शायद नहीं बता पाता वो, क्योंकि जब आता ही नहीं है वापस, हमें दिखता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता, तो बताएगा क्या? स्वर्ग और नरक मैं तो जहां तक समझता हूं यहीं पे है। जिसके पास दुख है, घृणा है, पाप है, मानसिक विकार है, अवसाद है, एग्रेशन, डिप्रेशन सब कुछ है, वो इस दुनिया में नरक भोग रहा है। और जिसके पास शांति है, मन की शांति है, जिसके पास सत्यता है, जिसके पास पवित्रता है, शुचिता है, वो स्वर्ग भोग रहा है। तो यहां आकर, ज्ञान सरोवर में आकर, यहां पर क्या मिला देखने को? अभी बहन जी बोल के गई, स्वर्ग मिला। तो स्वर्ग की जो भावना है वो यहीं पे तो है, और कहां मिलेगी? यहीं से सीख के जाना है हमें, यहीं से जाना है। और मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां शब्द खत्म होते हैं वो मौन की भाषा है, और मैं अपनी भाषा में वो शब्द उन्हें व्यक्त नहीं कर सकता जो मैंने यहां पे सीखा है आके, और जो मैं आगे सिखाने जा रहा हूं अपने साथियों को। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, एक गिलास को बाल्टी में नहीं डाला जा सकता। हां, गिलास को बाल्टी में डाला जा सकता है, लेकिन बाल्टी को तो गिलास में नहीं डाल सकते ना। तो यहां तो ज्ञान का सागर है, समंदर है, तो उस समंदर के ज्ञान को मैं अपने छोटे से दिमाग में कैसे डालूं, यही सोचता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी इसी तरह से जो यहां से ज्ञान लेके जा रहे हैं वो सभी के साथ बांट दें, और अगली बार हम जब आए तो और भी संतों को साथ में लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं महामंडलेश्वर कमल किशोर महाराज जी का। आपकी वाणी, आपने पहले ही प्रॉमिस किया कि 2 नहीं 2.25 मिनट में पूरा करेंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि आपका और मेरा नाम एक है, इसीलिए दोनों एक जैसा दम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। और अभी हम ईश्वरदास जी महाराज, जो फरूखाबाद से पधारे हैं, आपसे भी अनुरोध करते हैं, 2 शब्द आप अपने अनुभव के हम सबके बीच में रखेंगे। जोरदार करतल ध्वनि, थोड़ी हमारी चेतना जागती रहेगी और हम सब आपस में जागते रहेंगे। बस एक ही बात कहती हूँ कि जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए, और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कभी कमी नहीं है, बस आप जैसे संतों का साथ होना चाहिए।
श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम शांति। मंच पर उपस्थित ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, संत वृंद, विद्वत वृंद, आप और हम बंधुओं, दास तो पहली बार सौभाग्य मिला इस सभा में आने का। सुन रहे हैं कि 50वें वर्ष से यह सत्र चला आ रहा है, शांति सौहार्द भाईचारे की हुंकार भरी जा रही है। आज पुनः यह हुंकार ज्ञान सरोवर से उठ रही है, और उठना भी चाहिए, क्योंकि शांति सौहार्द और भाईचारे की मिसाल, भाईचारे का ज्ञान विश्व में फैलना चाहिए। आबू पर्वत की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, ये भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत माता की। हम 2 मिनट ज्यादा लेंगे, क्योंकि पहले जब बोले थे तब हमें समय कम मिला था, क्षमा करना आप लोग। बंधुओं, ये अनुभव दास को यहां आकर के अनुभव हुआ। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म है, शाश्वत सनातन धर्म। अन्य सब मत, मजहब, पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान की 25वीं धारा में वहां पर एक शब्द है, धर्म पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, राजनैतिक दलों ने उसको तोड़ मड़ोड़ करके पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्म निरपेक्ष शब्द सिद्ध किया। लेकिन उस सनातन धर्म में भी, सनातन धर्म की जो मूल है वो है मानवता, मनुष्यत्व। मानव में मानवता ना आई, मनुष्य तो कहते किसको हैं? बंधुओं, आपने सुना होगा, अनेक अस्त्रों के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र आदि। आज हम आपको एक ऐसा अस्त्र सुनाएंगे, अस्त्र का नाम जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। हमारे रामायणी जी बैठे हैं, राम जी ने मारीच के ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग किया उस अस्त्र का नाम क्या था? उस अस्त्र का नाम था मानवास्त्र। मारीच सतयोजन का सागर पारा 400 कोस दूर जाकर के गिरता है और मारीच के शरीर में खरोंच नहीं आई, इसका नाम मानवता है। यहां तक कि मारीच साधु बन गया। राम जी ने हो सकता और भी अस्त्र का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, मानवास्त्र का प्रयोग किया। मानवता उसी को कहते हैं कि जीव मात्र को हमारे से कष्ट ना पहुंचे। बंधुओं, मरा वही इस जीवन में, मरा वही नहीं कि जो जिया न आपके लिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, मनुष्य है वही तो जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य है वही तो जो मनुष्य के लिए जिए। बंधुओं, दास का आश्रम माँ गंगा के टापू पर है, चारों तरफ से माँ गंगा प्रवाहित होती हैं, प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है। पिछली वर्ष भी कमरों में 4 से 5 फीट खड़ा जल भर गया, जो भी आटा दाल चावल था वो सब खराब हो गया। 50 महात्मा रहते हैं स्थान पर, गौ माता हैं। इतने प्रतिकूल समय में यदि किसी को चिंता हुई उस दुख दर्द की, तो वो एक ऐसी शक्ति थी हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, हमारी बहन बी के मंजू बहन, जो कि पूरी गाड़ी सामान भर करके, फल फ्रूट मेवा मिष्ठान भर करके पहुंच गई, कि ऐसे कष्ट के समय में उस बहन को एक भाई की याद आई। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी जो बहनें हैं, जो भाई हैं, उनमें दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, भाईचारा, यह जो गुण हैं, ये यहाँ का अनुभव है। अधिक न बोल करके बंधुओं, जो हमने समय ज्यादा लिया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बहुत 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 धन्यवाद महाराज जी का, क्या ओजस्वी वाणी और कितना प्रेममय भाव था आपका, कि बहन और भाई का जो पवित्र नाता है वो किस तरह का होता है। आपकी आंखें सजल हो गई, ये भाव दर्शाता है सच्चे प्रेम को। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और अभी हम महामंडलेश्वर निर्मला सोनी जी से अनुरोध कर रहे हैं, आप आए और दो शब्दों में अपने भाव अनुभव के।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, आश्रम में मुझे जो सुखद अनुभूति हुई अवर्णनीय है, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया, एक परिवार जैसा, ऐसा लगता मैं परिवार से बाहर हूँ ही नहीं। आप सबके लिए बस मुझे जो 2 मिनट दिए, मैं 1.5 मिनट में ही बात खत्म करती हूँ, कि आप ब्रह्म कुमारी जी और ब्रह्म कुमार के लिए कहना चाहूंगी कि आग पर तैरती नमी देखी, जो आग होती है उस पे भी नमी तैरा दी जाती है। आग में बाग लगाना आपने सुना होगा, कि आग पर तैरती नमी देखी, आग पर तैरती नमी देखी, सबको देखा तो जिंदगी देखी, सबको देखा तो जिंदगी देखी, 4 पल तो भी नहीं गुजरे थे, 4 पल भी तो नहीं गुजरे थे, हमने तो तारीख में सदी देखी, हमने तो तारीख में सदी देखी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी, आपने तो आधे मिनट में ही पूर्ण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अपने बहुत 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 मान व सम्मान के योग्य जालेश्वर जी महाराज जी से भी अनुरोध करते हैं,
चंद अल्फाज आप अपने हम सबके बीच में प्रेममय।
श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंचस्थ सम्माननीय पूजनीय संत वृंद उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों श्रद्धामी देवियों सबके लिए मंगलमय शुभकामना वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम सब यहां विराजमान हैं ज्ञान सरोवर में माउंट आबू पर। हम सबको यहां से अमृत तत्व की प्राप्ति हो रही है, इसी अमृत तत्व को लेके हम सबको प्रस्थान करना है। हम स्वयं अमृत के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा, ये कहने की बात नहीं है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारी ओनम जरा तथा देहांतरे प्राप्त धीरस्तत्रण मुह्यति। जो धैर्यवान होते इसमें मोहित नहीं होते, ये केवल कथनी की बात नहीं है। यहां ज्ञानी अज्ञानी दो भेद बताए जाते हैं। तो ज्ञानी कौन है? जो श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके, निधिध्यासन करके उस ज्ञान को आत्मसात करे और सबको प्रसाद के रूप में, आनंद के रूप में वितरित करे, वह ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? जो केवल बकबक करे, करे कुछ ना, वो अज्ञानी है। बिन करनी कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भुक्ता फिरे सुनी सुनाई बात। तो हम सबको रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान माने राम, ज्ञान माने श्री कृष्ण, ज्ञान माने शिव, ज्ञान माने हनुमान जी, जहां आप लगा लीजिए, रीते ज्ञानान मुक्ति। हम सबको हमारा ज्ञान होना चाहिए। हम दूसरों की जानकारी खूब रखते हैं, अपनी जानकारी भूल जाते हैं। आप देखें ना आज के युग में बहुत सारे हमारे भाई बहनों को अपना मोबाइल नंबर खुद ही याद नहीं है, दूसरों का खूब याद करेंगे। तो यहां से हम सबको अमृत की बूंदे लेकर जाना है, ये पक्की बात है। और अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस का सबका अपना अपना अनुभव होता है। उस दिन मैंने निवेदन किया था भोजन के लिए, आज भी एक निवेदन कर दूं, भोजन को जरा सात्विक बनाइए, नमक मिर्ची मसाला तेल कम करिए उसमें। ये साधकों के लिए उपयुक्त तो भोजन नहीं है। 2 इंच की जीभ के स्वाद के लिए तो विवाद होता है। जो स्वाद को नहीं जीत सकता वो साधन नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरी अपील है, केवल कोई आदेश नहीं है। दूसरी बात ये है, हम सब ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं, तूफान भी खूब चल रहा है जोरों से, लेकिन याद रखिएगा हमने भी ज्ञान की ज्योति जलाने की कसम खाई है, क्योंकि कुछ लोगों ने तूफानों से समझौता कर रखा है। तो हमने भी उनको चुनौती दी है, हमने भी उनको चुनौती दी है। हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे ही। मैं जलता हुआ चिराग हूं, हम सब जलते हुए चिराग हैं। दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। ऐ संसार के लोगों, ऐ प्राणी मात्र, हम सब आपसे अपील करते हैं, दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, दुश्मनी मेरी अंधकार से। हमें अंधकार से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा। एक बात और मैं आप सबसे कहूं, सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जल रही है, एक ज्योति जलाइए केवल, श्रीमद् भागवत कार ने जिसे ज्ञान प्रदीपा पूरा कहा, ज्ञान की ज्योति है ये। एक बात ध्यान रखिएगा, हम सब यहां से कुछ लेके जाएं, 10 लाख बुझा हुआ दीपक एक दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता। 10 लाख मुर्दे यदि हमारे आसपास पड़े किसी काम के नहीं है, एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। 10 लाख बुझे हुए दीपक एक भी दीपक को नहीं जला सकता, लेकिन एक जलता हुआ दीपक करोड़ों दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, करोड़ों दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। एक सूर्य भगवान का उदय होता आप देखते नहीं? रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अनंत ब्रह्मांड का अंधकार समाप्त हो जाता है। पहले हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करें, फिर वो अपने आप बाहर प्रकाश निकलेगा। उसके लिए प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रयास से यदि हम प्रकाश बिखेरेंगे तो फेल हो जाएंगे, और सहज रूप से यदि सहजता से प्रकाश की निष्पत्ति होगी तो हमारे आप सबके जीवन में सुनिश्चित रूप से गहन अंधकार दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश बिखरेगा, जिससे सारे संसार को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति हमारे भीतर है मेरे भाई। अभी मैं बहन जी से कह रहा था, हमारे सारे वक्ता, हमारे संतजन विराजमान हैं, हम शांति की खूब चर्चा कर रहे हैं, ओम शांति ओम शांति, पर कुछ लोगों को समय कम मिलता तो भीतर यही अशांति हो जाती है। समय से भोजन ना मिले तो देखिए फिर ओम शांति के जगह ओम क्रांति हो जाएगी। समय से चाय ना मिले तो बताइए हम कहां पर रह रहे हैं, कहां जी रहे हैं, बताइए आप कहां पर रह रहे हैं, कहां जी रहे हैं। हमको इसी पर तो कंट्रोल करना है। ज्ञान प्रदीपा पूरा, ये भाई हमको सबको ना खाते खाते कितने जन्म बीत गए, कितने ट्रक कितने पहाड़ हमने खाए लेकिन पेट कभी भरा नहीं। हमने इतना पानी पिया कि लाखों करोड़ों गंगा जमुना नदियों जैसी बाढ़ आ गई पर कभी हमारी प्यास बुझी नहीं। हम सोते सोते कितने चद्दर फाड़ डाले, कभी नींद पूरी हुई नहीं। अरे जागो जागो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। हमको उठना है और खुद जागना है, दूसरों को भी जगाना है, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति दूसरों को जगा सकता है लेकिन सोया हुआ व्यक्ति खुद ही होश में नहीं, दूसरों को क्या होश में लाएगा। लेकिन एक बात और हमें ध्यान देना है, जो नींद में है उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है चद्दर ओढ़ के, अरे कुंभकर्ण को भी जगाया जा सकता है, पर आंख बंद करके जो सोया हुआ है नाटक कर रहा है उसे नहीं जगा सकते। इसलिए उसको छोड़ दीजिए, उसके भाग्य प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए। तो हम आप सबको करना क्या है, बस जो यही हम आप सब संदेश लेके जो जा रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने, हमारी बहनों ने, भाइयों ने जो संदेश दिया, एक बात और समझ लीजिए, नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। पानी है, वैज्ञानिकों ने H2O बताया, H2O बनाया नहीं, बताया। तो ये सत्य अहिंसा तितिक्षा जो हमारे यहां धर्म के लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तयम सोच मिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये हम सब में है। चिंगारी हर व्यक्ति के दिल में है, उस चिंगारी को केवल हमें सत्कर्म की, अच्छे कर्म की लकड़ियां डालकर, उसमें प्रेम का घी डालकर उसको प्रज्वलित करना है, फिर हमारी सारी बुरी वासनाएं बुरी आत्माएं सब भस्म हो जाएंगी और फिर अपने आप हम शुभ्र हो जाएंगे, दिव्य चिन्मय अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। ये हम सबका स्वरूप है, इसलिए आप सबने हमें यहां पर आमंत्रण किया, इसके लिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, हमारी पुष्पा बहन जी, नारायण भाई जी, जिन्होंने बहुत प्रयास किया, पिछले वर्ष टिकट भी कट गई थी पर हम नहीं आ पाए, चार पांच वर्ष से प्रयास कर रहे थे, इस समय आना हुआ, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ हमारे भगवान शिव ने भी तो कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस हरि भजन का तात्पर्य है हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव जी, जिनके चरणों में हम समर्पित हों, भारतवर्ष के चरणों में हम समर्पित हों और अपने जीवन की पिपासा को शांत करके हम सबके लिए मंगलमयी वातावरण का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, ओम शांति, जय सियाराम, जय सियाराम।
बहुत 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 करतल ध्वनि के साथ हम आपका अभिवादन और शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सुंदर सी बात की अगर सार गर्भ में कहें कि ईश्वर में हो आस्था, अगर ईश्वर में हो आस्था तो उलझनों में भी है रास्ता। जीवन की ये एक सच्चाई है कि किसी भी क्षण में हो, अगर सही अर्थों में उसका साथ है तो वो भी हमारे सदा साथ है। अभी हम चाहते हैं, अब पीछे भी सभी का मन तो होगा, लेकिन यदि एक किसी नम मतलब एक मिनट में कोई कुछ कहना चाहे तो आप भी पीछे से।
श्री गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु पलहार भक्षितम उमासुतम सुख विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर तव पाद पंकजम। जगदादि जगद्गुरु सोमलिंग अमोघ सिद्धाय श्री गुरु मधुगुंडेश्वर चरणों को वंदन करते हुए या ज्ञान मंच पर सभी साधु संत महंत को वंदन करते हुए मानव जन्म मनुष्य जन्म एक बार आता है, फिर आता नहीं। मनुष्य जन्म आने पर हम क्या करना चाहे, तो मनुष्य जन्म आने पर हम को गुरु के चरणों में सेवा करके मुक्ति पानी चाहिए। तभी एक गुरु और शिष्य में संवाद होता है। शिष्य कहता है, मैं बड़ा, तू कैसा बड़ा, तू तो पृथ्वी पर खड़ा। पृथ्वी बोलती है, मैं बड़ा, पृथ्वी कैसा बड़ा, वो तो आदिशेषे पर खड़ा। आदिशेष कैसा बड़ा, वो तो शंकर के गले में पड़ा। शंकर कैसा बड़ा, वो तो कैलाश पर खड़ा। कैलाश कैसा बड़ा, वो तो लंकापति रावण ने उठाया। रावण कहता है, मैं बड़ा, रावण कैसा बड़ा, वो तो हनुमान ने जलाया। फिर हनुमान कहता है, मैं बड़ा, हनुमान कैसा बड़ा, वो तो राम के चरणों में पड़ा। राम बोलते हैं, मैं बड़ा, वो तो कैसे बड़े, वो तो श्री गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़ा। तो सबके बड़ा कौन है, तो सबके बड़ा गुरु है। हम सब मनुष्य जन्म ले चुके हैं, तो गुरु दीक्षा लेकर गुरु के सेवा में आकर गुरु से मुक्ति पानी होगी। कैसे गुरु होने चाहिए, तो सदगुरु मधुगुंडेश्वर महाराज और शिव बाबा के जैसे गुरु हमारे जन्म में आए तो हमारा जन्म सफल होगा। इतना बोलकर मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। जय मधुगुंडेश्वर महाराज, जय शिव बाबा।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहला बार मेरे गुरु को वंदन करूं, सृष्टि ऊपर गुरु सोमेश्वर के कृतज्ञगी के मेरे प्रणाम कर को, और उसको शिष्य अमोघ सिद्धेश्वर उनको भी प्रणाम करते। सदगुरु उनको शिष्य सदगुरु मधुगुंडेश्वर महाराज को उनको पांव ऊपर मरे को मस्तक रखो। मैं पहला बार एक बार इधर आया गया, हरे दूसरा बार मैं आया। मैं भर गांव मंदिर मठ बहुत फिरते। मैं तिरुपति के गया, बालाजी के गया, सिरसिल के भी गा जाकर है। मैं अक्कलकोट स्वामी समर्थ भी गया जाकर है। हर गांव को मैं गा जाकर है। मैं मेरे को बोलने की क्या है, भर टिकन में जा पाया बार। अभी शांति वंदन में ये मोहन टॉप में ये कैसा सुंदर दिखता है। ये अन्न क्षेत्र बोलो, भर टिकन में जा पाया बाद भी इधर कैसा मेरे को सुख समाधान कैसे होए। बहुत बार मैं दिखे खरे इधर बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा है। मेरे को भगवान ये शुभ बहन माताजी को यहां बैठ को साधु संत ये बार बार इधर आको उनको दो दो शब्द हैं यहां बोलने को बोले तो मैं यहां को मेरे बोल को या मेरे को ये दे ओम शांति ओम शांति।
सम्मानित मंच और हमारे आदरणीय नारायण भाई जी, ब्रह्म कुमारी सारी बहने और मेरे आदरणीय दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य संत कमल किशोर जी को मैं सभी को प्रणाम करता हूं और एक मिनट में ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहां आकर अनुभव तो इतने हैं कि मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। एक छोटा सा अनुभव भी बताता हूं आपको कि मेरी जो इच्छा है, हमें चार दिन हो गए यहां पर आए हुए, मेरी यहां से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं अपने मन, मेरा मन इतना यहां पर व्याकुल, इतना मुझे यहां प्रेम सम्मान कि मेरे पास शब्द नहीं है। और जितने यहां धर्म प्रेमी आप बैठे हो, आप सबका प्यार और आप सब ने भी यहां से जो ज्ञान लिया, जो इनका समर्पण है हमारी बहनों का, वो देखकर हमारा जो मन प्रफुल्लित है उसके हमारे लिए उसके लिए शब्द नहीं है। बस यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।
मंच पर उपस्थित सभी धर्मात्माओं महात्माओं को नमन करते हुए हॉल में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहली बार संयोग बना और मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने का अवसर मिला। इसके पहले 10 से 15 साल पहले मैंने आश्रम के बारे में कुछ अलग ही सुना था। क्या सुना था मैं शेयर करूं? बोले जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनों के संपर्क में आते हैं या आश्रम में चले जाते हैं उनका वहां पर वशीकरण कर लिया जाता है, उनको आश्रम में बंद करके रखा जाता है। लेकिन मैंने सोचा हाँ ठीक है, मैंने ज्यादा विचार नहीं किया, ज्यादा दिल से नहीं लिया बात को, कह दिया कोई बात नहीं। संयोग बना, गुरुदेव का फोन आया हमें माउंट आबू चलना है। मैंने हाँ किया, हम ट्रेन समय आया और ट्रेन में बैठे, ट्रेन से लेकर उतरे तो यहां ज्ञान सरोवर तक जब हम आए, यहां आने के बाद स्वागत सत्र, विभिन्न सत्रों के माध्यम से राजयोग के सत्र और अभी तक सारे कार्यक्रमों को मैंने पूरे समय अटेंड किया और ये पाया कि जिन्होंने कहा था वो सत्य कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मुझे एक शब्द याद आया जो बाबा तुलसी ने कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे नित भौर, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर, चरितार्थ हो गया। क्योंकि वो मंत्र जिसके लिए रामचरितमानस को रचना करने वाले महानायक ने, उस तुलसी बाबा ने जो बात लिखी वो यहां चरितार्थ हो गई। और मीठे वचनों के माध्यम से जो हमारे ब्रह्मा कुमार हैं, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, इनके वाणी में प्रेम, प्रवचन में प्रेम, किसी भी बात को कहने में जो प्रेम है, जो करुणा का भाव है, जो मिठास है, जो भाव है, उस भाव से कौन वशीभूत नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि प्रेम ही तो वो बीज है जिससे हम संसार तो क्या, उस परमात्मा को भी हम पा सकते हैं, उसके प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं, उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इसलिए मैं बस यही शब्द कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तीन पंक्तियां कहना चाहता हूं, कहूं? कि आओ करें सृजन शुभ, आओ करें सृजन शुभ, दुर्भावना हटाकर समाज को आगे बढ़ाएं, सद्भावना बढ़ाकर सद्ज्ञान को बढ़ाते चले, सद्ज्ञान को बढ़ाते चले हम, अज्ञान हटाकर हृदय में प्रकाश भरें, दैवत्व जगाकर। अब समय आ गया है, अगर हम समय को पहचान लेते, हम नहीं बिखरते तो आज हमें इतना विचार नहीं करना पड़ता। बिखराव रोक दे हम अब संगठित होकर, अरे भारत को विश्व गुरु बनाए हम साकार बढ़ाकर, आओ सृजन करें शुभ दुर्भावना हटाकर, दुर्भावना हटाकर, दुर्भावना हटाकर, ओम शांति ही शांति ही शांति।
ओम शांति, ओम शांति। समचरण सरोजम सांद्र नीलाम भुधावम जगण नीत पानी मंडनम मंडनानाम तरुण तुलसी माला कंधरम कन्यानेत्रम सदय धवलासम विठलम चिंतयामि। ज्ञानेश भगवान विष्णु, निवृत्तिर भगवान हरा, सोपान भगवान ब्रह्म, मुक्ताख्या ब्रह्म चित्कला। नमो सद्गुरु तुकया ज्ञान दीपा, नमो सद्गुरु सचिदानंद रूपा, नमो सद्गुरु भक्त कल्याण व्रति, नमो सद्गुरु भास्कर पूर्ण कीर्ति। यहाँ ब्रह्म बाबा के सानिध्य में आकर हमें यहाँ ऐसा दर्शन हो गया। सभी गुरुजन संत वृंद इनों का दर्शन हमें हमारी ब्रह्म कुमारी जी, जो सभी दीदियाँ हैं, सभी भाई जी हैं, उन्होंने हमें इतना सुंदर दर्शन कराया। सब ज्ञान सागर में हमको दुख की देने का ये अवसर दे दिया, तो हम बहुत रोनी हैं। चार दिनों से हम इतने गदगद हो गए, उनकी प्रेम वाणी, उनकी सेवा, उनकी ये सभी अवस्था, हमें इन्होंने इतनी सुविधा देकर हमें इतनी व्यवस्था तो दी और अवस्था पर हमें ये दिया, अवसर दिया अवस्था पर आने का। वो अवस्था प्रत्येक जीवों के हृदय में आने के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है हमें, वो आप सभी आत्मसात कर हमें आगे बढ़ाना है और अपने जो आनंद मिला वो सभी को देना है, यही हमारा कार्य है। ये कार्य करने के लिए ही हमें प्रभु ने हमें भेजा है, पर आप एक कार्य करके ही ये मानव जन्म सफल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, यही ये मैं आपको ये करती हूँ और यहाँ पूर्ण विराम देती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप हमारी हमजिन से नारी शक्ति माता बहनों के लिए तो वैसे भी बाबा हमेशा वंदे मातरम कहते हैं, एक बार फिर से जोरदार ताली। हम अभी विचार कर रहे थे कि जब प्रथम दिन आए थे तब बहुत बहुत अच्छी गैदरिंग थी, धीरे 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 थोड़े अपने कार्य अर्थ ही समझिए, तो मुझे वो दो लाइन याद आ रही थी कि छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम चाहे कैसा भी हो, मंजिल कितनी ऊंची चाहे कैसी भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं हालात कैसे भी हो। आप सबने इतना सुंदर साथ निभाया है, आपके लिए एक बार ताली तो बनती ही है जोरदार। आप सबके लिए ये बात कह रहे हैं, और क्योंकि शिव बाबा अनेक गुणों के सागर हैं, प्रेम के, शांति के, सुख के, दया के, करुणा के, लेकिन एक उनका गुण है कि वो परमानंद अर्थात परम आनंद के सागर हैं, और उनके बच्चे मास्टर परमानंद हमारे बीच में बैठे हुए हैं। महामंडलेश्वर भ्राता जी से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप आए और इस कार्यक्रम को उस अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं। आपकी जब वाणी चलती है तो एक बार तो लगता है ना कि स्वामी विवेकानंद कहीं गए नहीं हैं, अभी यहाँ ही हमारे साथ हैं। ऐसे ओजस्वी वाणी के धनी भ्राता जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आमंत्रित करते हैं।
ओम शांति। सम्मानित मंच, अंतिम पड़ाव पर आ गया ये पूरा खेल। बड़े मुश्किल से लोगों ने प्रयास किया, हमारी दीदियों ने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो होना था वो हो ही गया। आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे कि ये चार दिन कार्यक्रम चला, इसमें हमारी माताओं बहनों भाइयों ने हमारी खूब स्वागत सत्कार किया दिल खोल करके, और उनकी सब लोगों ने महिमा भी की। लेकिन जो इस यज्ञ का जो सृजन करता है उसकी किसी ने महिमा नहीं की। बुद्ध की महिमा हुई, कबीर की हुई, राम की हुई, कृष्ण की हुई, सबकी हुई, लेकिन जो दादा लेखराज जिसे ब्रह्मा बाबा का पद दिया गया है, जिसके कारण ये पूरा मंच आज जो ज्ञान सरोवर, आनंद सरोवर, मान सरोवर, शांति वन, पांडव वन, जो भी वन है, सब वनों का जो सृजन करता है दादा लेखराज, जो महापुरुष कहें उन्हें, संत कहें, जो भी कहें, वो शब्द कम है, उनकी महिमा अभी तक किसी ने नहीं की, जिन्होंने शिव बाबा को अपने तन में धारण करके गृहस्थ आश्रम में रह करके बुद्ध कबीर से कोई कम नहीं है वो, और उन्हों की ही बदौलत है कि आज 50,000 बहनें और भाई मिल करके पूरे विश्व में 140 देशों में सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं। इसलिए एक बार उस आदि पिता, जगत पिता ब्रह्मा बाबा के लिए दिल से सभी लोग तालियां बजाएं और उनका धन्यवाद करें। समय का अभाव है, और कुछ कहना था हमको, लेकिन समय इतना तीव्र गति से चल रहा है कि वो समय हमको रुकने नहीं देगा यहाँ पर, इसलिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और एक अंत में एक चीज और कहेंगे जाते जाते, कि हम लोग साधु संत बने हैं कपड़े बदल करके, आश्रम बदल करके, सब अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ की जो माताएं बहने हैं ना, वो साधु संत बिना किसी कपड़ा बदले, हमें इनसे ज्ञान लेना चाहिए, ये ज्ञान का स्वरूप है। इन माताओं बहनों को हमारे अंतर हृदय के गहराइयों से कोटि कोटि अभिनंदन, जिन्होंने शिव बाबा को ये शब्द बहुत प्यारा लगता है, मेरा, बोलो सब लोग, मेरा मीठा प्यारा, हाँ ये बाबा इनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, बाकियों के लिए तो भगवान केवल नाम जपने के लिए है, केवल ब्रह्मा कुमारियों के लिए शिव बाबा उनकी निजी संपत्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद, ओम शांति।
महाराज जी के हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने बाबा ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज का जिक्र किया। मैं उस पर एक बात यदि इजाजत दो तो जोड़ना चाहती हूँ कि अभी तक यदि वर्तमान परिवेश में देखें, पूर्व की नहीं कह रही, वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे कि जो गुरु या जो भी गद्दी पर है, फिर उनके बच्चे गद्दी पर आते हैं, फिर उनके बच्चे गद्दी पर आते हैं। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज, उन्होंने उस जमाने में करोड़ों की संपत्ति थी, उस जमाने के अंदर जब 1936 की बात आती है तब उनके घर टेलीफोन और गाड़ी थी। आप समझिएगा कि वो किस दर्जे के थे। एलिजाबेथ के उनसे कांटेक्ट, राजाओं महाराजाओं से, आज भी वहां के म्यूजियम में बाबा की बनाई हुई क्लिप बक्कल वहां के म्यूजियम में उपलब्ध है। इतने महान, हर तरह से, धन से भी, और जिसने अपना सर्वस्व लगा दिया, पांच बच्चे होते हुए भी ये नहीं सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा, और उसके बावजूद इसी संस्थान में ब्रह्मा बाबा खुद, उनकी धर्म पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा और उनकी पुत्र वधु, पांच लोग तो सगे परिवार से थे, जिसको खून का रिश्ता कहते हैं, फिर भतीजा अलग, और बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस संस्थान का मुखिया नहीं बना, और फिर कभी भी नहीं बना। एक साधारण आने वाली बहन, और वो ओम राधे के नाम से परिचित हुई और संस्था की मुखिया बनी। जो प्रथम तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं, आगे आगे सामने लगी है बाबा के ज्योति बिंदु के साथ, और फिर दूसरे नंबर पर दीदी मनमोहिनी जी, उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी,
उसके बाद अन्य तब तक भी उनकी पुत्री इस संस्थान में थी, दादी प्रकाशमणि तक भी। लेकिन कभी भी सब कुछ अपना लगाने के बाद बाबा ने लिख करके दिया, क्योंकि ये मन है ना, मानता नहीं। फिर कह रहे हैं हम, क्यों कभी कल मन बदल ना जाए, इसलिए बाबा ने सरकारी वकील बुला करके अपना सर्वस्व लिख करके देके कि मैं आज से अपनी चल अचल संपत्ति इन बहनों के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। और फिर बाबा ने अपना जीवन की आखिरी घड़ी तक जो खिलाया, जो दिया, जैसा पहनने को दिया, जैसा आदेश किया, बाबा ने शिरोधार किया। तभी जाकर के वो जगत के पिता प्रजापिता ब्रह्मा की उपाधि से नवाजे गए, और आज भी वो हैं और हम सब के बीच में अपनी सेवाएं बाबा दे रहे हैं। इसलिए आपने बहुत सुंदर विषय लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में बस इतना कहना चाहते हैं कि बंधुओं, आप न होते तो ये सभा न होती। ये तो आपका धन्यवाद है जो बैठे हुए हैं। अब हो सकता है इसमें कोई माइक वाला होगा और कोई अन्य सेवा वाला, लेकिन आप सब बैठे बहुत 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 धन्यवाद। पर एक बात याद रखिएगा, आत्मा को निरंतर प्रतिदिन साफ करते रहिए, आत्मा को निरंतर प्रतिदिन साफ करते रहिए, लोगों को निरंतर माफ करते रहिए, और शिव बाबा को निरंतर याद करते रहिए, शिव बाबा को निरंतर याद करते रहिए, तो हमारा जीवन में आने का मकसद बहुत सफल होगा। और बस अंतिम पड़ाव उस जगत नियंता की याद में, उससे पूर्व हमारे एक संत महोदय, उनके भी दो शब्द हम सुनना चाहेंगे।
सर्वप्रथम परमात्मा शिव को मेरा प्रणाम, मेरे हृदय में उनका ध्यान और आह्वान करता हूं। ओम शांति। वास्तव में ही समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है और 1 बजे मेरे हाथ में माइक आ गया है। मेरे कुछ शब्द अभी जो मेरे पहले आचार्य जी ने बोला बाबा जी के बारे में, उन्होंने चुरा लिए, उसमें से कुछ एडिट कर रहा हूं मैं। कल जब हम लाइफ जर्नी के बारे में हम सुन रहे थे, तो बाबा जी की जो दिव्य जर्नी शुरुआत हुई, जन्म तो उनका 1856-57 में जो बताया था, 1936 में उनकी दिव्य जर्नी शुरुआत हुई थी। तो मैं एक कहानी पढ़ी थी, वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं धैर्य के लिए। कल से मैं बड़ा सोच में पड़ा हुआ हूं कि धैर्य किस तरह से सफलता की ओर हमको लेके जाता है। एक रिसर्च हुई थी, एक टीचर ने 10 स्टूडेंट एक कमरे में बुलाए, उनको 10 टॉफियां दी और 2 टॉफियां देके ये बोला गया कि ये टॉफी 10 मिनट के बाद खानी है, और वो ये कहकर टीचर वहां से बाहर चली गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो देखा कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि यार टॉफी का तेरा कलर कौन सा है, तेरा रंग कैसा है, तेरा मीठा है, मेरा तो खट्टा निकला, ऐसे करके बातें कर रहे थे। तो उसमें से 3 स्टूडेंटों ने टॉफी निकाली थी। टीचर ने उनसे जवाब मांगा, पूछा और लिख के दे, उन्हें चुपके से क्या करा, 3 स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए और उसके बाद उनकी क्लास चली। कुछ सालों के बाद उस टीचर ने उन स्टूडेंट्स को ढूंढना शुरू करा, तो उनने ये पाया कि जो वो 3 स्टूडेंट जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी, जिन्होंने आज्ञा का पालन किया था, धैर्य का पालन किया था, वो स्टूडेंट कोई IAS था और बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे वर्कआउट कर रहे थे, और जो 7 स्टूडेंट जिन्होंने कलर की बात कर रहे थे, जो टेस्ट की बात कर रहे थे, उनमें से 3 की तो बहुत बुरी हालत थी, खाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। तो यही बात मैंने कोरिलेट करी बाबा जी के साथ कि आपने कल एक जर्नी सुनी होगी कि बाबा जी यहां पे आए, कैसे आए और कैसे उन्होंने यहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो कितना धैर्य किया। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि 1936 के बाद कितना धैर्य किया, आज 2024 है, उस 2024 के अंदर क्या जबरदस्त मार्वलस स्टूडियस मतलब यहां पे एक वर्कआउट काम हो रहा है। मैं वास्तव में इस सबका सम्मान करना चाहता हूं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, कि जो मुझे यहां पे देखने को मिला है, जो समर्पण मुझे यहां देखने को मिला है, जो प्रेम यहां पे देखने को मिला है, जो बिल्डिंग्स यहां पे देखने को मिली है, जो मेहनत यहां मुझे देखने को मिली है, मार्वलस, ये मैंने कहीं नहीं देखा। मैं सभी का बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं, मान करता हूं। आगे बढ़ते रहें, हमसे जितना भी जो हो सकेगा जरूर से जरूर हम इनकी सेवा में, इनकी चर्चाओं में, और मैं भी अब आगे जाके ये जो मुझे अनुभव मिला है मैं ये शेयर करूंगा। अंत में मैं विराम करता हूं क्योंकि समय वास्तव में तीव्र गति से जा रहा है और सबको भूख भी लगी हुई है ना। तो धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद करने के लिए मैं बहुत ही मान व सम्मान के योग्य और इस समस्त कार्यक्रम के नींव की ईंट की तरह हमारे नारायण भाई जी को आदर के साथ आमंत्रित करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले चार दिनों से किस तरह से हर प्रोग्राम को टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रामनाथ भाई जी के साथ बराबर लगे हुए। तो नारायण भाई जी, यथा नाम तथा स्वरूप, इतना ही मैं इनके लिए कहना चाहूंगी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे कठिन से कठिन काम है आभार प्रकट करना, है ना, क्योंकि आभार शब्द के अंदर ही बाढ़ छिपा हुआ है। अब कैसे मैं आभार प्रकट करूं, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी बहन जी ने और आप सब ने दे दी तो सिर के बाल भी उड़ गए, है ना। और आप लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं तो और भार बढ़ता जा रहा, बड़ी मुश्किल से तो आपको हमने यहां बुलाया और कह रहे कि सब हमको छोड़ के जा रहे हैं तो भार और बढ़ गया। तो कैसे मैं अपने भार को उतारूं, मैं चिंतन कर रहा था आपसे पूछूं। फिर भी इस कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत है ना, जिसकी वजह से ये आप और हम सब मौजूद है, और जिसके जन्म जन्म से हम जिनको पुकारते आए हैं, ये वो कर्म भूमि है, ये उस माता पिता की भूमि है जिस भूमि पर आप सभी चार दिन से श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे माता पिता जो परमात्मा शिव बाबा और इस सेवा के निमित्त जो हमारे अभी सब चर्चा कर रहे थे, बाप दादा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा जी, और हमारी सब पूर्वज जो पीछे आप देख रहे हैं, सब पूर्वजों की प्रेरणा से और वर्तमान समय इस संस्था की जो चीफ है आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, और हमारे वरिष्ठ भाई निर्वेद भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी और मृत्युंजय भाई जी, और हमारे इस धार्मिक प्रभाग के जो पूर्वज पहले गंगे दादी रही और प्रेम दीदी, और साथ में ही मनोरमा बहन रामनाथ भाई, और इसके साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो साधु संत आप देख रहे हैं, बहुत त्यागी आत्माएं कैसे कैसे समय निकालकर भूख प्यास सहन करके इस धरती पर पहुंचे हैं। मेरे को तो बहुत थोड़ा दिल में पीड़ा हो रही है कि आप तीन चार दिन यहां पहुंचे हैं, आपको सफर में कहीं तकलीफ हुई होगी, भूख प्यास नींद सब सहन करके भी आप यहां पहुंचे हैं। तो इन सभी का मैं शब्दों से कैसे आपका आभार प्रकट करूं, अगर आप नहीं होते तो आज ये कार्यक्रम इतना सुंदर रूप नहीं ले पाता। तो इस सब संत महात्माओं का, आचार्यों का, कथाकारों का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं, और इससे भी ज्यादा अगर आप सभी शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को नहीं सुनते तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं, और साथ में ही इस कार्यक्रम को सुंदर रूप देने के लिए हमारे अदृश्य डिपार्टमेंट ज्ञान सरोवर के, जैसे साउंड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वीडियो डिपार्टमेंट है, भोजन है, ट्रांसपोर्ट है, आवास निवास है, रिसेप्शन है, कॉन्फ्रेंस ऑफिस है, कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो नाम लूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, जो अदृश्य रूप में इस कार्यक्रम को सुंदर रूप देने में लगे हुए हैं, उन सभी का भी धार्मिक प्रभाव आभार प्रकट करता है। और साथ में मैं अपना भार किस रूप में व्यक्त करूं, तो आभार शब्द के अंदर ही आप सभी को मैं दो लाइनें अर्पित करके मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन यहीं पूरा करता हूं। भार उतार कर आभा बढ़ाया करें, भार उतार कर आभा बढ़ाया करें, आत्मा का पाठ पढ़ा के भार उतारा करें, आत्मा का पाठ पढ़ा के भार उतारा करें, यही आका पाठ रोज पढ़ाया करें, यही आका पाठ रोज पढ़ाया करें, भार उतार कर ईश्वर का आभार रोज किया करें, यही हमारी आप सबसे विनती है, यही आप सबसे विनती है। ओम शांति, ओम शांति। और कोई तकलीफ हुई हो तो हम आप सबसे माफी भी चाहते हैं, शब्दों से कर्मों से, तो हम आप सबसे माफी भी चाहते हैं। और अभी इसके बाद आप सभी भोजन पर जाएंगे, और भोजन के बाद आज आबू दर्शन का कार्यक्रम जैसे आपका बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट पर आप पहुंचेंगे, और फिर रात्रि को 8:30 बजे बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, एंटरटेनमेंट, तो वो कार्यक्रम भी आप जरूर अटेंड करेंगे। और फिर इसके बाद कल लास्ट राजयोग सत्र और अमृत वेले का योग यहीं पर रहेगा, इस तरह का कार्यक्रम बनाया गया। और साधु संत के लिए भोजन करके इनकी अलग एक व्यवस्था की गई जो उनको बताया गया, तो इस तरह से आज आप आबू दर्शन का भी लाभ लें। फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है आप मेरे से जरूर आप शेयर कर सकते, मैं यही आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
सभी जहाँ बैठे थे यदि कृपया स्थान ग्रहण करें, क्योंकि शंखनाद से इसका प्रारंभ हुआ था, शंखनाद से ही इसे संपन्न करते हैं। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम त्यागी जी आश्रम विश्व सेवा समिति विलायत कला कटनी मध्य प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी सेवाओं के लिए इन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करते हुए, और अभी शंखनाद के साथ सभी बैठे एक बार, जिस जगत नियंता से हमने इजाजत लेकर के ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था उनकी रहनुमाई का धन्यवाद करते हुए 2 मिनट सभी परमात्मा की याद में।